चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अम्मा बात फाउद बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई मैंने 24 घंटे से चाय नहीं पी है, उसको बोला चाय ले आए इधर ही, वो पता नहीं किधर लेके चला गया। 24 घंटे हो गए नहीं पीना, तो थोड़ी सी खोपड़ी आउट हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बात फाउद बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين। قرآن مجید کی ان آیتوں پہ کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے۔ بیان شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں، میرا ایک کلپ چلا ہے، میرے بیان سے کٹ کر کے چلایا گیا ہے، جس میں میں گرمی کے فضائل بیان کر رہا ہوں۔ یہ گرمی تھوڑی سی لگنے دیں، اتنا بڑا ہوا گرمی کو نہ بنائیں۔ اس پہ بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس ہیں لوگوں کے، इधर नीचे रख दें इसको، बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स हैं। असल में खुद तो एसीओ में घूमते हैं, असल में खुद तो गाड़ियों में घूमते हैं, गरीबों का क्या पता। और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को फेवर कर रहा हूं, के इलेक्ट्रिक वालों को फेवर कर रहा हूं। तो ये जो लोग के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही एहतजाज कर रहे हैं। हमें भी बहुत गुस्सा आता है, रात को सोते हुए लाइट चली जाए। तो मेरा उस बयान से मकसद ये नहीं है कि के इलेक्ट्रिक वाले दूध के धुले हुए हैं या गवर्नमेंट माशाल्लाह अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है तो हमें चाहिए अब हम गर्मी बर्दाश्त करें। जाहिर है जिसने सुबह जाना हो और रात को लाइट चली जाए और पसीनों में तैर रहा हो, उसको तो गुस्सा आएगा ना, और टैक्स भी दे रहे हैं। तो वह एहतजाज जिसने करना है भरपूर तरीके से करे, उसमें हम आपके साथ हैं। पानी नहीं आ रहा, हम टैंकर डलवा डलवा के थक गए इंतहाई शदीद गर्मी में। मैंने 5-6 हजार रुपए के टैंकर डलवाए हैं, हर दूसरे दिन टैंकर आ रहा है क्योंकि पानी बेताशा इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरे उस बयान का मतलब ये नहीं है कि आप गर्मी बर्दाश्त करें, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज ना करें और जो गरीब मर रहे हैं गर्मी में उनको मरने दें आप। मेरा मकसद सिर्फ एक ये है, और एक लिमिट तक हर चीज बर्दाश्त होती है। तो पूरे बयान में मैंने एक्सप्लेन किया है उसको, लेकिन जब शॉर्ट क्लिप चलता है ना तो पूरी बात नहीं आती उसमें, तो गलत मैसेज चला जाता है। मेरा मकसद सिर्फ बताने का ये है कि अल्लाह ताला ने हमें सर्दी का मौसम भी दिया और गर्मी का भी। तो सर्दी का इसलिए दिया ताकि सर्दी लगे, इसलिए नहीं दिया कि नहीं लगे। और गर्मी का इसलिए दिया ताकि गर्मी बोलो लगे। तो थोड़ा गर्मी लगना, थोड़ा सर्दी लगना, ये सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बाकी जाहिर है एक लिमिट है ना उसकी। इतनी गर्मी लगना शुरू हो गई कि पानी की कमी हो गई, बेहोश होना शुरू हो गए, तो ये अल्लाह की तरफ से थोड़ी है, ये किसकी तरफ से, ये मेहरबानी है गवर्नमेंट की है। तो वक्त सिर्फ ये बताना है कि उसको बहुत ज्यादा छुई मुई ना बनाएं। और अब जो बहुत ज्यादा अमवात हो रही है उसमें कुछ हुकूमत की नाअहली भी है, लेकिन कुछ लोगों ने भी अपने आप को आदी बना लिया है। जरा सा पसीना निकलने ही नहीं देते, गर्मी में वॉक नहीं करते, तो हर वक्त एसी में बैठे रहते हैं। तो जाहिर है फिर जब आप हर वक्त एसी में बैठोगे तो फिर तो हीट स्ट्रोक भी होगा, जरा सा बाहर निकले बेहोश हो गए, ये सारे मसाइल खड़े होंगे। तो क्यों इतना छुई मुई बना रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को माहौल का आदि बनाओ। ये गर्मी भी अल्लाह की रहमत है, नेमत है, अगर एक हद तक हो ना तो पसीना निकालो और बहुत ज्यादा अपने आप को छुई मुई ना बनाओ। ये पसीना निकलना सेहत के लिए इंतहाई ज्यादा मुफीद है, सिर्फ मुफीद नहीं है, बहुत से भी ज्यादा मुफीद है। गोरे आर्टिफिशियल पसीना निकलवाते हैं अपना, वो ऐसे स्टीम लेते हैं जाके ताकि पसीना निकले, तो अल्लाह ने फ्री फोकड़ में आपको पसीना दिया हुआ है। बाकी जाहिर है हर चीज की एक लिमिट है, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप वो 50 डिग्री पहुंचा हुआ है और आप कोयले गर्म करके खा रहे हो कि गर्मी मुफ्ती साहब ने कहा गर्मी को एंजॉय करो, और दिसंबर में आप जीरो टेम्परेचर है और आप बर्फ पे जाके बैठे हुए हो कि सर्दी को क्या करो। अल्लाह ने सर्दी इसलिए दी ताकि लगे, तो इतनी लगने के लिए नहीं दी अल्लाह मियां ने, थोड़ी सी लगने के लिए दी। तो थोड़ी बहुत बर्दाश्त करना सीखो, थप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। बाकी ये कि लोग कहते हैं बच्चे गर्मी दाने से एक्चुअली मैंने, तो गर्मी दाने बच्चों के हमेशा से होते हैं ना, पहले नहीं हुए, और थोड़ा सा चींपें भी करते हैं जब गर्मी दाने होते हैं, ये कोई इतनी बड़ी टेंशन की बात। असल में टेंशन खुद को हो रही होती है, लेबल बच्चे का लगाया हुआ होता है। बच्चे पालना मुश्किल हो गया है आजकल, थोड़ा बहुत चींपें करेगा ना, तो बच्चा जरा सा चींपें कर रहा है तो कोई बात नहीं यार, बच्चा आपकी माओ ने भी तो आपको बर्दाश्त किया है, तो ये भी थोड़ा सा टैं लगाएगा तो बर्दाश्त करो क्या है। असल में हर आदमी चाह रहा है कि दुनिया में बस पेड़े ही खाने को मिले, हर वक्त हम मजे में रहें, हर वक्त कोई टेंशन कभी भी ना आए, जिसकी ये सोच हो गई ना वो टेंशनों में बर्बाद हो जाता है। कितनी इस गर्मी है, मैं मानता हूं नुकसान हो रहा है, लोग भी मर रहे हैं, ये टमाटर वाले देखो इसी धूप में ठेले लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, इनको तो ORS के लफ्ज कभी नहीं पता है, नींबू का पानी भी नहीं पीते ये लोग, ठीक है ना, फिर भी चल रहे होते हैं। इसी गर्मी में ये टमाटर बेच रहे हैं, खरबूजे बेच रहे हैं, तरबूज बेच रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ गर्मी है और कुछ हमारी अपनी आदतें हैं, जो हम लाड प्यार में, हमने अपने आप से लाड प्यार करके अपने आप को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम, दो चार घूंट जल्दी जल्दी पी लूं फिर आपको दे दूं, असल में बिल्कुल भी नहीं पीना कल से, अब सही हो गई बस। तो अब मैं वो आयतें शुरू करता हूं, इन्नल इंसान खुलिका हलुआ इदा मस्सहु शर्र जजुआ, इस आयत का भी यही मफहूम है। अल्लाह कहते हैं इंसान बहुत जल्दबाज है, जब उसे कोई मुसीबत पहुंचती है एकदम उस पर रिएक्शन रिकॉर्ड करवा देता है अपना, ये एकदम सबर बिल्कुल भी नहीं करता, सबर नहीं करता, रिलैक्स, जब भी कोई ऐसा उछल रहा हो ना क्या बोलो भाई, रिलैक्स, आराम से तवे पे बैठा हुआ है क्या, आराम से बैठ गया ना। तो इस पर तो कई हफ्तों से बात हो चुकी है कि जल्दबाजी इंसान की तबीयत में जब होती है, तजजिया जल्दबाजी में कर लेना, फैसले जल्दबाजी में कर लेना। मैं बार बार तलाक का मौजू क्यों छेड़ता हूं, हर दूसरे दिन कोई तलाक का केस आया हुआ होता है, हर दूसरे दिन। पिछले हफ्ते भी आया हुआ था ना जब मैं बयान के लिए, आज इतवार था, मैं आया हूं जामे तो रशीद से थका हुआ, मैंने कहा थोड़ा आराम करता हूं, मैं लेटा हूं, कितनी गर्मी थी ना, जब मैं लेटा हूं ठक 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 किसी ने दरवाजा बजाया, अब उनको पता नहीं कैसे चले गया कि मैं यहां हूं, हालांकि मैं ऐसी जगह सो रहा था कि किसी को पता नहीं था। भाई अब गर्मी में हम आए हैं, लेटे हैं, थके हुए हैं, शाम को बयान भी है, धप 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 दरवाजा बज रहा है, उठ के खोला है तो एक खातून बिचारी गर्मी में खड़ी हुई है, उनकी पूरी फैमिली, मसला पूछना है। मैंने कहा मसले का टाइम है ना, आप उस टाइम पे आए, नहीं जी बहुत इमरजेंसी। खैर अब मैं क्या उनका दुखड़ा, जो मेरे साथ जुल्म हुआ मैं क्या सुनाऊं कहानी, खैर उस बिचारी के साथ ज्यादा जुल्म हुआ है। तो मैंने दफ्तर में बिठा दिया, अब केस क्या है, ये सब जल्दबाजी की बातें बता रहा हूं आपको। केस ये है कि जी शोहर ने स्टैम्प पेपर पे 3 तलाकें लिख के दी हैं, अब वो पछता रहा है, अब क्या कर रहा है, वो पछता रहा है, मेरे बच्चे हैं, मैं वापस जाना चाहती हूं। तो अहले हदीस से हम फतवा ले सकते हैं, अक्सर कॉमन सवाल यही होता है, अहले हदीस से फतवा ले सकते हैं, मेरे शोहर को बड़ी निदामत है, ये बहुत कॉमन मसला है, मर्द बाकायदा होशो हवास में सोच समझ के 3 तलाकें देता है, स्टैम्प पेपर पे लिखता है, उसके बाद घुन्ना बन के ना औरत की नजर में, ताकि मैं बुरा ना बनूं, क्योंकि सोसाइटी में बदनाम होता है ना, सारी दुनिया मलामत करती है तूने किया क्या है, अगर देनी भी थी यार एक दे देता, बाद में खानदान वाले बैठते देखते किसकी गलती है, क्या मसला है, कंप्रोमाइज हो जाता ना, क्या ख्याल है। ये बेशरम आदमी अचानक जान छुड़ाना चाह रहा होता है कि मैं अभी लिख देता हूं या बोल देता हूं, बाद में बोलूंगा ओहो अचानक असल में एक्चुअली गुस्से में मेरी खोपड़ी क्या हो गई थी। ये मंजन हर 3 तलाक देने वाला बेचता है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। उसके बाद वो खानदान की नजरों में बदनाम होने से बचने के लिए, अपनी बीवी की नजरों में, बच्चों की नजरों में, क्योंकि बच्चे बड़े होंगे बोलेंगे हमारे अब्बा ने खड़े खड़े हमारी अम्मा को, कितनी भी बुरी हो औरत यार ऑप्शन तो दो उसको सुधरने का, आप एक दे दो ना, सारी दुनिया को अब तो ये मसला पता चल गया है कि इकट्ठी 3 तलाकें देना सवाब है या नाजायज है, हराम है नाजायज है, सारी दुनिया को अब ये पता चल गया है मसला, सोशल मीडिया ने वायरल कर दिया सारी दुनिया, पहले लोगों को नहीं पता होता था, इतने केसेस आ रहे हैं, देता है मुंह से तलाक बाकायदा होशो हवास में, बाद में एक मंजन हर तलाक देने वाले के जबान पर है एक्चुअली में गुस्से में क्या हो गया था, पागल हो गया। फिर लड़की को टॉर्चर, वो बेचारी कहती यार मेरे मियां को गुस्सा आ गई, इसका मतलब ये तो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, अब मैं वापस, वो हलाले की तरफ जाते हैं, फिर इस्लाम को बदनाम करते हो, फिर इस्लाम ने हलाला नहीं रखा है, वो हलाला जो शरी हलाला है वो तो ये है कि भाई तुम्हारी शादी कहीं हो गई नहीं बनी, तो अगर उससे अलहदगी हो जाती है तो जहां चाहे शादी करो, पहले वाली से भी कर सकती हो, कहीं और भी कर सकती हो, तो इसमें तो कोई भी गैरती नहीं है। अब क्या है कि ये हर मर्द जो है ना, एक दूसरी शादी के बाद ऐसा होता है, दूसरी शादी हुई, जिस दिन पकड़े गए, पहली बीवी ने डाला दबाव, दबाव ना, अब दूसरी को पता है धड़ 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 तलाके निकालते हैं और फिर कहते हैं एक्चुअली मेरे ऊपर असल में दबाव इतना था, मैं मजबूर था, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुमसे टूट के मोहब्बत करता हूं, लेकिन मेरे पे दबाव इतना, ओ भाई ये चस्के लेके ना इसका दिल भर गया था और अब ये क्या कर रहा है, दोनों तरफ से पेड़े खाने की कोशिश कर रहा है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? इतना आसान होता ना जबान से तीन तलाकें निकल जाना, हमारे भी इतनी शादियां हैं, क्या हमारे कभी घर में झगड़ा नहीं हुआ होगा? सबके नेचुरल है भाई, आपके बाप दादाओं के झगड़े नहीं हुए होंगे? एक एक साल मियां बीवी में लड़ाइयां रहती हैं, बातचीत बंद हो जाती है, मार धाड़ तक होती है, सब कुछ होता है, सारी दुनिया के मुंह से क्यों नहीं निकल जाती तलाकें? एक साहब मेरे पास आए, सगे भाई को कत्ल किया, जरा मैं इतना गुस्से में आता ठा गोली चला दी है। मैंने कहा यार गुस्सा हमें भी आया है, अभी मेरे गार्ड को गुस्सा आके दुर यूं करा दे, 15 बंदे लिटा दिए इसने। और फिर जनाब जब पकड़ा गया तो कह रहा यार असल में मेरे घर से फोन आया था, मेरा मीटर आउट हो गया था, मैं पागल हो गया था, दुर दुर मैंने चला दिया तो इत्तेफाक से बंदे ही 10 बैठे हुए थे, तो मरना भी, 8 ने तो मरना ही था उसमें। दुनिया में कोई अदालत छोड़ देगी क्या भाई? चैंबर में गोली भी थी और ट्रैगर पे हाथ भी था, तो इतना सा चला ही तो है ना भाई, इतना सही चलता है और आगे बंदे की जान चली जाती है। अब आप ये कहते हो कि गुस्से में इतनी सी उंगली यूं हो गई तो क्या हो गया? भाई गुस्से में आपको पता था इतनी सी उंगली यूं होने से सामने वाले की जान जा सकती है, आप जहर खा लोगे, आप कभी भी नहीं चलाओगे। फौज में देख लो हर आदमी के पास बंदूक होती है, हर आदमी के, पुलिस में हर शख्स के पास बंदूक होती है, कभी देखा पुलिस वाले को गुस्सा आया ऐसे चको उड़ा दिया? होते हैं लाखों में एक आध वाक्य होता है, लाखों में, उस पर लटकता भी है वो, फांसी भी होती है उसको। एक तलाक ही को लोगों ने खेल बना लिया है, मजाक बना लिया है। तभी कुरान तलाक के जहां अहकाम बयान करता है, अल्लाह कहता है ला तत्तखिदु आयातिल्लाहि हुजुआ, अल्लाह की आयात को मजाक मत बनाओ, यानी अल्लाह के अहकाम को हंसी मजाक की चीज मत बनाओ। ये दूल्हा को ना कमबख्त को शादी से पहले तरबियत कर दिया करो, उसकी उस बेशरम बेगैरत को समझा दिया करो। चलो अच्छा, कह रहे हैं आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, पूरी पी लो। गुस्सा बहुत आ रहा है, गुस्सा इस पर आता है ना यार, तुम उस लड़की की तुमने जिंदगी तबाह कर दी और फिर तुम घुन्ने बन के कह रहे हो, वो लड़की रो रही थी बेचारी, जो आज मुझे उसी वजह से उसे गुस्सा भी नहीं आया, मेरी तो नींद खराब हो गई, लेकिन मैं क्या बेचारी मजबूर है कि मैं क्या करूं, वो बार बार मुझे कह रहे वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो जो भी आज भी किसी का फोन आया, अच्छा वो खातून का केस खत्म हुआ तो एक जानने वाले उनका फोन आया कि वो दूसरी शादी की है लड़के ने, एक साल से एंजॉय कर रहा था लाइफ को, पहली बीवी को पता नहीं था, जब पहली को पता चला है तो इतना दबाव उसके ऊपर आ गया है लड़के के ऊपर, तो लड़का बेचारा बहुत मजबूर होके दूसरी को छोड़ना चाह रहा है और वो कह रहा है मेरी दूसरी वाइफ को कोई जाके समझाए कि मैं बहुत मजबूर हूं, देखो मेरी हालत देखो, मैं नहीं छोड़ना चाहता लेकिन मजबूरी में छोड़ रहा हूं, यानी वाइफ को भी समझा के ना कि वो कह चले आप बहुत मजबूर हैं तो चले आपने एक साल तो मजे उड़ा लिए तो चले कोई बात नहीं, अगर आप छोड़ते हैं मजबूरी में तो सुअर भी हलाल हो जाता है, ठीक है ना, खिंजीर भी हलाल हो जाता है। तो वहां भी मैंने गालियां जो मुझे बनती थी जो समझ में आ रही थी, तो मैंने कहा भाई ये बेगैरत का दिल भर गया है, एक साल इसने इंजॉय कर लिया, अब इसको बोझ लग रही है, वरना मर्द औरत के हाथों मजबूर हो नहीं सकता, आदमी आदमी है भाई, पजामा थोड़ी है, तुम अपना कमाते हो, मजबूर वो होगा जो किसी और के टुकड़ों पे पलता है, तुम्हारी अपनी जॉब है, तुम्हें बाप घर से निकाल देगा, निकल जाओ भाई, अभी भी तो तुमने रेंट पे अलग बीवी को लेके घर दिया हुआ है ना, बाप घर से निकाल देगा, निकल जाओ भाई, अब्बा हम आपकी खिदमत करते रहेंगे लेकिन गलत चीज में हम आपका साथ नहीं देंगे, आपके कहने से हम बिला वजह एक बेगुनाह लड़की को छोड़ दें ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। अब्बा आपके, मेरी अम्मा को अगर आप छोड़ देते आपके अब्बा के कहने पर, तो ये मेरे साथ भी ज्यादती थी ना, बिला वजह अब्बा अगर कह रहे हैं तो। वो जिन्होंने मुझे कॉल की ना, बड़े मशहूर हैं, पता नहीं वो नाम मैं उनका बताऊं उनको अच्छा लगे, हो सकता है अच्छा लगे उनको, हो सकता है बुरा लगे, तो इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा। तो उन्होंने कहा भाई वो अब हाथ पांव फूल रहे हैं, उसके पकड़ा गया। मैंने कहा हाथ पांव फूल रहे हैं तो मेरी तरफ से खींच के आप भी लगा दो, ताकि उसका इम्यून सिस्टम उसका क्या हो, स्ट्रांग हो जाए। जब कई थप्पड़ खाएगा, चांटे खाएगा, इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर वो चांटा लेस हो जाएगा, उस पर थप्पड़ गालियां असर नहीं करेंगे। ऐसे ही ढीठ आदमी का काम है दूसरी शादी करना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे यार? वाकयात इतने हो रहे होते हैं ना कि अब याद ही आ रहे होते। अभी 3 दिन पहले की बात है, एक लड़का गरेबान खुला हुआ हफ रही हूं ना, बेचारा अजीब सा जैसे मर जाएगा खड़े खड़े। कह रहे मैंने दूसरी की ये पकड़ा गया हूं, उसके दोस्त उसको लेकर आए कि ये खुदकुशी करने जा रहा था। अब पता नहीं झूठ बोल रहा, बाहर तो सच ही बोल रहा था। हम इसको आपके पास लेकर आए हैं, इस पे पहली बीवी का और ससुराल का दबाव इतना है कि अब ये खुदकुशी के ख्याल आ रहे हैं कि यार दूसरी को छोड़ूंगा तो वहां भी साले हैं, सही है ना, वो भी एक टेंशन है, तो बेहतर है कि बीच से ही निकल लो पतली गली से। मैंने उसको समझाया, ये सब दूसरी शादी वालों को और सब लोगों को मैं उसूल समझा रहा हूं। मैंने उसको कहा, अच्छा मैंने पता है क्या किया, मैंने कहा भाई तू दोनों के हुकूक अदा कर रहा है ना? कह रहे हाँ। मैंने कहा जुल्म तो नहीं कर रहा ना किसी एक के साथ, दूसरी की वजह से पहली या पहली की वजह से दूसरी पर? कह रहे नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। मैंने कहा मसला कोई नहीं है, अब तू गरेबान खोल। मैंने गरेबान खोला, वैसे तो उसका पहले से ही खुला हुआ था, गर्मी से खुला हुआ था। मैंने कहा बदमाशी से खोल, गरेबान खोल और स्टाइल समझाया उसका। गरेबान फिर मैंने ना पकड़ा, ऐसे घुमाया, मस्जिद से बाहर लेकर आया। मैंने कहा तुझे गालियां सिखानी है मस्जिद में मुनासिब? वाकई अल्लाह की कसम यही हुई, बिल्कुल सच बोल रहा हूं मैं आपको। आप समझ रहे सर मुझसे मुबालगा कर रहे हैं। मैंने कहा तुझे मैंने गालियां सिखानी है, बाहर निकल, तो मस्जिद में नहीं सिखा सकता। उसको मैंने ना गरेबान यूं पकड़ के ना खींचा बाहर। मैंने कहा तूने अपने साले को ऐसे खींचना है, उसका साला बहुत तंग कर रहा था ना। मैंने कहा आराम से तूने समझा दिया ना कि भाई मैंने हलाल काम किया है, आपकी बहन के हुकूक में कोई कमी नहीं होगी। आपने आराम से समझा दिया, अब मुसलसल टॉर्चर कर रहे हैं आपको। मुसलसल एक दो दफा होता है, बर्दाश्त करो भाई। इतना टॉर्चर कि बंदा खुदकुशी करने पे आमादा हो गया, इससे ज्यादा क्या टॉर्चर होगा भाई? तो मैंने कहा ऐसे उसके गरेबान पकड़ना और बोला तेरे बाप का खाता हूं क्या मैं, समझ में आ रही हो? और वो गाली वो वाली गाली बीच में क्या कर दी, फिट कर दी। मैंने कहा ये दुनिया ऐसी नहीं है कि तुम मीठे बनोगे तो वो, ये जो कमजोर होता है ना दुनिया उस पर हावी आती है। मैंने कहा खुदा के बंदे तू जब अपना कमान सालों के टुकड़ों पे पल रहा होता फिर तूने करनी नहीं चाहिए थी दूसरी, फिर तो करनी नहीं चाहिए थी ना, अपने खर्चे पे होती है, अब्बा के खर्चे पे थोड़ी होती है ना, सालों के खर्चे पे होती है। जब तू अपना कमा रहा है तो तू क्यों डर रहा है भाई? बोलो भाई रहना रहो, नहीं रहना तो ठीक है जाओ अपने घर लाइफ पे एंजॉय करो। तो मैंने कहा आपके इस सिचुएशन में तो तीसरी के ख्याल आते हैं, आपको खुदकुशी के आ रहे हैं इस सिचुएशन में। मैंने कहा इंसान को तीसरी के आना शुरू हो जाते हैं, बदनाम तो होना था अब वो हो गया, अब बदनामी वाली जिंदगी, तीसरी भी करो। फिर मैंने कहा चौथी भी कर, जिसने रहना हो रहे। मैंने कहा अपनी तरफ से जुल्म ज्यादती नहीं करनी है, अपनी तरफ से बीवियों के हुकूक पूरे अदा करने हैं, बारी देनी है सारा अपना, क्योंकि जब आप खुद गलत होते हैं ना फिर आप में कॉन्फिडेंस भी, खुद चोरी नहीं करनी आपने। दोनों को मोहब्बत दो, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर घर में होती है, बर्दाश्त करो। इतना ज्यादा कि यार खुदकुशी करने जा रहा है बेचारा, वो साला बोलेगा हम तो बहनों ही हमारा आधा उधर गया था, आधा था अब पूरे से ही महरूम हो गए। तो ये चलता है मार्केट में ना। तो खैर हम क्या कर रहे थे, क्या कहां से कहां निकल लिए हम, जल्दबाजी की बात कर रहा था मैं। तो तलाकें निकालते हैं किसमें, जल्दबाजी में, और फिर घुन्ने बन के बोलते हैं असल में तो मैं तो मजबूर था। मजबूर नहीं होता, ये औरत की नजर में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा होता है, समझते हो, ये कोशिश कर रहा होता है कि मैं एक्चुअली भाई ऐसा गुस्सा कोई पागल नहीं होता कि आप मुंह से फड़फड़ जो है ना फायरिंग करना शुरू कर दो। लोगों के घरों में बंदूकें होती हैं, पुलिस वालों के पास बंदूकें होती हैं, फौजियों के पास राइफलें होती हैं, बम होते हैं। कभी ऐसा हुआ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक दिन गए, वो एटम बम जहां रखा हुआ है गलती से पांव आ गया बटन पे, है भाई अल्लाह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मगफिरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, बम चल गया। हालांकि उसमें भी एक दो तारें ही होती हैं, या जहाज जा रहा है जंगी जहाज और छींक आई गलती से बटन पे हाथ आ गया गलती से क्या हो गया बटन पे हाथ आ गया, या गुस्सा आया गुस्से में जाके बम पे पांव रख दिए जाके, बम के बटन पे। रिजल्ट जब पता होता है ना कि क्या रिजल्ट निकलेगा इसका, तो फिर कितना भी गुस्सा आए इंसान गुस्से में पागल नहीं होता। तो ये कमबख्त लोग बाकायदा इरादा करते हैं कि तीन तलाकें दो ताकि हमेशा के लिए जान छूट जाए, जोड़ का सुलो का ऑप्शन खत्म हो जाए। ये बाकायदा इरादा करके देते हैं और फिर उसके बाद भी औरत को बेवकूफ बना रहे होते हैं। एक्चुअली अहले हदीस लोग बोलते हैं तीन एक होती है, फलाना बोलता है तीन एक होती है, कोई किसी के बोलने से तीन एक नहीं होती। इसमें तो मैं कई दफा मेरे यूट्यूब पे क्लिप भी है यूट्यूब पे कि तीन तलाकों पर इजमा है पूरी उम्मत का। तो मैंने उस खातून को समझाया, मैंने कहा इस अजाब से जान छूटी आप, ये फिर कमबख्त देगा। और ऐसे वाकयात हुए मेरे सामने, देखो हम तो मौलाना है ना, हमारे सामने तो कितने वाकयात अब तक आ चुके होंगे। तीन तलाकें देते हैं मर्द, फिर उल्लू बनाता है औरत को, अहले हदीस से फतवा लाके एक को हरामकारी करता है बीवी को रख के, फिर दोबारा तीन तलाकें दे देता है। क्योंकि जिसको कंट्रोल नहीं है ना, तो कंट्रोल नहीं होने का मतलब फिर कंट्रोल नहीं है। तो मैं उन औरतों से कहता हूं तुमने हरामकारी की, उसके बाद भी अल्लाह ने तुम्हें फिर क्या सिला दिया। तो मैंने उस लड़की को, पता जवान लड़की थी, मैंने उसको तसल्ली क्या दी, मैंने कहा देखो इसी में खैर होगी। एक आदमी को गुस्से पे काबू नहीं है ना, उसे अपने हाथ पे भी काबू नहीं होगा। कल वो चाकू भी मार सकता है, कल वो डंडे से सर भी फाड़ सकता है। तो अल्लाह के हुक्म पे राजी रहो, उसको भूल जाओ, उसको जिंदगी से निकाल दो, कहीं और इज्जत के बाद शादी करो, उसी मर्द के साथ जिंदगी गुजारो। फिर अल्लाह ना करे अगर तलाक हो जाती है, तो फिर अल्लाह ने ऑप्शन दिया है भाई पहले के पास भी जा सकती। और मैंने कहा अक्सर ऐसा होता है कि जब औरत दूसरे मर्द से निकाह करती है ना, तो मर्द बहुत दफा पहले से ज्यादा अच्छा मिल जाता है उसको। ये यादें अभी इसलिए आ रही हैं कि दूसरा जिंदगी में आया नहीं है, आ जाएगा तो हो सकता है इसको भूल जाओ, भूल जाएगी उसको। तो इसलिए अल्लाह के हुक्म को तब्दील मत करो, अपनी जबानों पे क्या करो कंट्रोल। और ये नुकसान किसका है, जल्दबाजी का। जो कुरान कह रहे इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, इंसानों के फैसले कैसे होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं। तो ये चीजें इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं। और हमारा निजाम ऐसा है, सऊदी अरब में जब आप तलाक देने जाओ ना, तो तलाक नामे पे एक तलाक लिखी होती है, तीन लिखी नहीं होती। सऊदी अरब में जो स्टैम्प पेपर है ना, जो तलाक नामे है, उसमें कितनी तलाकें होती हैं, एक। चले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इदा मस्सहु खैरु मनुआ। अल्लाह कहते हैं इंसान जल्दबाज है, तो जल्दबाजी में एक अल्लाह ने जुज़िया बयान किया कि इसके जल्दबाजी के नुकसानात में एक नुकसान ये भी होता है कि जब इसके पास दौलत आती है तो ये कंजूस बन जाता है। कंजूस क्यों बनता है, ये ना जल्दबाजी है ना, तो ये चाह रहा है सारा नफा अभी उठा लूं, कहीं ऐसा ना हो खत्म ना हो जाए, सारे पेड़े भी खा लूं। हालांकि थोड़ा सा मैच्योरिटी होती सोचता तो इसे पता चल जाता यार मेरी जैसी मेहनत तो बहुत सारे लोगों ने की है, सबको पैसा नहीं मिला, मुझे अगर मिल गया तो ये सिर्फ मेहनत का दखल नहीं है, ये किसका दखल है इसमें, अल्लाह के इरादे का। तो जिस खुदा के पास खजाने हैं, जो मुझे रोजी दे रहा है, अगर वो मुझे कह रहे बहन पे खर्च करो, बाप पे खर्च करो, माँ पे खर्च करो, कुर्बानी करो, हज करो, मदरसों में पैसा दो, मस्जिद में पैसा दो, गरीबों को खिलाओ, तो जब मैं उसके कहने पे खिलाऊंगा तो वो मुझे लावारिस कैसे छोड़ देगा। समझ में नहीं आ रही बात यार, आपका बाप अरबपति है, बाप ने कहा बेटा ये मेरा माजूर बच्चा है, जरा इसका थोड़ा ख्याल करना। अगर बाप में गैरत होगी ना, तो जब वो देखेगा कि यार ये मेरा बड़ा बेटा ना इस माजूर का बहुत ख्याल कर रहा है, तो आपको कभी जरूरत होगी तो फिर आपका ख्याल कौन करेगा, बाप करेगा। गैरतमंद बाप में जब हो सकती है तो अल्लाह आपको कैसे लावारिस छोड़ देगा भाई। लेकिन अल्लाह कहते हैं इंसान ये सोचता नहीं है, बस वो जैसे ही पैसा आया ना ये जमा करो यार, एक के दो, दो के चार बनाने की फिक्र करो, सदका खैरात मत करो इसमें से। फरमाया इन्नल इंसान खुलिका हलुआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब दौलत आती है कंजूस, और जब दौलत जाती है, गुर्बत आती है या परेशानी आती है, शोर शराबा हा हु ही। तभी तो आप देखो ना लोगों को हर वक्त मुंह पे ना, आप लोगों के अलावा की बात कर रहा हूं भाई, ऐसा ना आप समझे हमारी इंसल्ट हो रही है, किसी के चेहरे पे खुशी कमबख्त के नजर ही नहीं आती। हर वही नहीं क्या हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, यूं हो रहा है, ये फलाना हो रहा है, अबे क्या हो रहा है, तेरे को रोटी नहीं मिल रही है, अबे रोटी से क्या होता है, खाली रोटी थोड़ी है मसला, कमबख्त तेरा पेट भरा हुआ है ना, इसलिए तुझे लग रहा है कि खाली रोटी मसला नहीं है। जिस दिन तुझसे अल्लाह ने रोटी छीन ली ना, तू कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, रोटी चाहिए। अभी पेट भरे हुए हैं, तोंदे भरी हुई हैं, इसलिए हरी हरी सूझ रही है। हजरत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ने एक वाकया बयान किया, बगदाद में ना मुसलमानों की खिलाफत थी, हुकूमत थी, जाहिर है उस जमाने में बहुत जंग का मुसलमानों का जो है वो डंका बज रहा था पूरी दुनिया में, रसद गाहें हमारी, सैयारा गाहें हमारी, तो बदमाशी थी मुसलमानों की। तो जब पेट भरे हुए थे, मुआशी तरक्की भी और दुनिया पे हुकूमत भी और साइंसी तरक्की भी, ये सारे गोरे हमारे पास पढ़ने के लिए आया करते थे, तो दबदबा, तो टेंशन लेस जिंदगी हुई ना, तो आशिकों की तादाद बहुत बढ़ गई थी बगदाद में। किसकी तादाद? आशिकों। इस मुआशके जो है ना, क्योंकि जब तोंदे भरी हुई होती है तो फिर हरी हरी सूझती है, तो आशिक बहुत हो गए ना, क्यों फलाने को फला से इश्क हो गया है, तो फलाने को शहजादी से इश्क हो गया है, तो वो नहीं मिल रही तो टेंशन में जा रहा है। तो बुजुर्गान ने दीन, जाहिर है मेहनत करते भाई, ये मुर्दार है दुनिया है वगैरह वगैरह, जो बुजुर्गों का तरीका होता है। कहते हैं बगदाद में पड़ गया कहत। क्या पड़ गया? कहत, कुछ वक्त के लिए। तो सारे आशिक मार्केट से शॉर्ट जिससे पूछते भाई तुम्हें फलानी चाहिए, कहते हैं रोटी दे दे फला की ऐसी की, आगे वो गाली भी लगा देता होगा। वो गए मुझे क्या चाहिए? रोटी, मुझे रोटी चाहिए। तो हम लोगों की तोंदे भरी हुई हैं, हमारे पेट भरे हुए हैं, इसलिए हमें हरी हरी सूझती है। देखो टमाटर वाला पता है खुशी की जिंदगी क्यों गुजारता है? उसको कुछ ज्यादा वो एक्सपेक्ट करता ही नहीं है, ज्यादा उम्मीदें उसको, उसके बहरिया टाउन की बात करें वो खराटे लेकर सोना शुरू कर देगा। उसको पता है यार इस टमाटर से मैं बहरिया टाउन में कोई प्लॉट नहीं ले सकता। उससे आप बात करें कि अमेरिका के वीजे की, उसको पता है टमाटर इस रेडी की बेस पे मुझे अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा। उससे जापान के वीजे की बात करें टेंशन नहीं लेगा। तो वजह उसकी, उसको तवक्कुआत ही नहीं है, लिहाजा वो अपनी छोटी सी दुनिया में क्या है, मस्त। मैं तो मिलता हूं ना टमाटर वालों से भी, मैं अक्सर एक बयान में वाकया बताता हूं। हमारे एक दोस्त तो नहीं, मेरा दोस्त बन गया था वो, मैं वो लेमन नहीं खाता था ना, ये जो कीनू माल्टे नहीं खाता था, मेरा गला खराब हो जाता था खाते ही। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये खाया करो, इसलिए गला खराब हो रहा है कि आप खाते हैं, इसमें विटामिन सी है, खाओगे तो नहीं होगा खराब। तो मैंने दे दनादन फोड़ना शुरू कर दिया, और फिर ऐसे फोड़े हैं कि अब तो खाते ही कीनू माल्टे हूं, और लेमन के बगैर अब हमारा गुजारा नहीं। उस दिन मैंने बयान में दिखाया था ना कितना लीमू निचोड़ के मैंने पिया। तो अब मुझे लीमू माल्टों की आदत पड़ गई थी ना, मैंने कहा खाओ, क्योंकि मैंने बहुत अरसे छोड़ा हुआ था, इस चक्कर में कि गला खराब होता है। तो एक माल्टे वाले से मेरी हो गई दोस्ती, रोजाना में जाके ना रात को उसके पास, हालांकि रात को खाने की चीज है नहीं है, दिन में खाने की चीज है, लेकिन हम रात को भी फोड़ देते थे। तो मैं उसके पास जाकर के खड़ा हो जाता, जाके दो चार कीनू वहीं खाए और वहीं पैसे दिए और पतली गली से निकल लिए। तो मेरी हो गई उससे दोस्ती। मैं देखता था यार ये बंदा खुश बहुत है, मेरा ख्याल था इसका ये साइड बिजनेस होगा, असल में तो इसके बहरिया टाउन में प्लॉट होंगे, एहसानाबाद में जमीनें होंगी, और हो सकता है इस्लामाबाद में नए प्रोजेक्ट। जो उसके चेहरे पे खुशी थी ना, उससे लगता था कि ये कोई बहुत बड़ी फिल्म है, साइड में वैसी तवाज़ुअन ये एक रेडी लगा रहा है। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हारा इसके अलावा कोई बिजनेस है? उसने कहा नहीं भाई, और होना भी नहीं चाहिए था क्योंकि सारा दिन तो वो उधर ही नजर आ रहा है। मैंने कहा कितने माल्टे कीनू लाते हो? कह रहा सुबह ये रेडी भरी हुई होती है, शाम को खाली। मैंने कहा अच्छा, कमा रहा होगा जाहिर है, छड़े छाट के लिए, पान गुटके के खर्चे के लिए एक रेडी बहुत है। तो मैंने कहा कि आपका के शादीशुदा हो? कह रहे मेरी बीवी है और पता नहीं 7 या 8 बच्चे, 10, मैंने पहले सुनाया वाकया, 10 बच्चे। मैंने कहा 10 बच्चों को इस रेड़ी से पाल रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहे सुबह पेट भरा हुआ होता है उनका, शाम को भी पेट भरा हुआ होता है, और कहता है मैंने अपने बूढ़े वालदेन को भी अपने साथ रखा हुआ है। मैंने कहा दूसरे भाई क्यों नहीं रखते? कहते हैं, वो कहते हैं इस गुर्बत महंगाई में बच्चों को पालना बहुत मुश्किल। कहते हैं मेरा भाई है, उसके 1 या 2 बच्चे हैं, वो कह रहे हैं इस गुर्बत में बच्चे मत पैदा करो, मत पालो। तो जो बच्चे नहीं पालना, तो फिर माँ बाप भी नहीं पाल रहा वो, क्योंकि जाहिर है महंगाई में जैसे बच्चे पालना मुश्किल है, तो माँ बाप पालना उससे ज्यादा मुश्किल है। तो मैंने कहा गुजारा होता है? कह रहे होता नहीं, हो रहा है, खा रहे हैं पी रहे हैं। वो क्यों खुश है इतना? उसने दुनिया से ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई। वो कह रहे मेरी जरूरत ना घर की एक छत है, मेरे बच्चों को रोटी मिल जाए, पढ़ाई हो जाएगी बहुत अच्छी बात, नहीं तो हर एक को रेडी देके, क्या ख्याल है भाई? अब पांच बेटे और पांच बेटियां अगर हो तो पांच बेटों एक रेडी से जब इतना आ रहा है तो जैसे जैसे बेटा जवान होगा तो पांच रेडियों से पांच गुना ज्यादा आमदन आएगी कि नहीं आएगी? और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके औलाद ज्यादा थी, गरीब थे, बेटे जवान होते चले गए ना तो सिर्फ पांच रेड़ियां नहीं बनी हैं, पूरा सब्जी मंडी में बिजनेस खड़ा हो गया उनका। औलाद सोर्स ऑफ इनकम है, इसमें इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होती जितनी अर्निंग होती है। फैमिली प्लानिंग वाले बताते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो है, अर्निंग नहीं है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। खोपड़ी शरीफ में नहीं आ रही बात। और गरीब को औलाद की जरूरत मालदार से ज्यादा है। मेरे बयान पे एक आदमी ने कमेंट्स किया, मैंने कहा कि तुम बच्चे ही पैदा नहीं करते, बुढ़ापे में क्या खिदमत के लिए बंदा रखोगे? तो एक आदमी ने कहा हम बच्चे नहीं पैदा कर रहे, हम पैसा बचा रहे हैं, बुढ़ापे में हम क्या रखेंगे? नौकर रखेंगे, वो हमारी खिदमत करेगा। अच्छा, नौकर तुम्हारी खिदमत करेगा, नौकर अपने बुढ़ापे में क्या रखेगा? नहीं आई बात। उसके पास क्या, उसके लिए क्या पैकेज है? तुम तो गरीबों को ज्यादा कह रहे हो कि बच्चे कम पैदा करो, जिनके पास बुढ़ापे में नौकर रखने के पैसे नहीं है। तो इससे तो पता चलता है गरीब को ज्यादा जरूरत है औलाद की। तो ये कमबख्त बड़े बेशरम लोग हैं, मेरे वही गाली आ रही है। सारा सेटअप इन लोगों ने बर्बाद किया। तो हमने अक्सर आल औलाद वालों के चेहरों पे खुशियां देखी हैं क्योंकि उनमें अल्लाह पे तवक्कुल होता है। खुशी का ताल्लुक इससे नहीं है कि जेब में पैसे कितने हैं। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, मस्जिद के मिंबर में बैठा हूं, मैंने फैक्ट्रियों के अरबपति ताजिरान करोड़पति मालिकान को टेंशन में देखा है क्योंकि अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है। वजह उसकी है कि खरबों रुपए भी आ गए, छीनने का डर हर वक्त लगा रहता है उनको। नहीं आई बात। अब देखो, एक बंदे की फैक्ट्री, सर पे टोपी, ये भी शायद सुना हुआ आपने वाक्य, सर पे टोपी, सफेद कपड़े, ऐसा लग रहा था कि इससे दम करा ले आदमी, इतना नेक, नमाजी, परहेजगार। मुझे कहता है मुफ्ती साहब हर वक्त एक टेंशन में है। और मुझे लग भी रहा था उसके जिसके चेहरे पर खुशी होती है ना, चेहरे से पता चल जाता है। कुछ लोग होते हैं जब जाओगे ऐसे खिला खिला चेहरा उनका, लग रहा होगा यार ये बंदा खुश, कुछ होंगे हर वक्त ऐसा लगे तवे पे बिठाया हुआ है, किसी ने चूल्हा जला दिया नीचे से ऐसे लगता है जैसे चूल्हा तवे पे बिठा के नीचे से चूल्हा जला। अच्छा, मेरे बारे में भी लोग कहते हैं जो इतना खुश खुश नजर आता है ना, पैसा बहुत है। जो मेरे 15-20 साल पहले से मुझे जानते हैं ना, उनको पता है कि जब बिल्कुल जेब में 5 रुपए भी नहीं होते थे ना, इससे ज्यादा ही खुश थे हम, इससे कम नहीं थे। और खर्चे हमारे दबा के थे, यानी खर्चे से मुराद जिम्मेदारियां। 3 तो मेरी बहुत पहले से हैं, बहुत पहले से 3 है मेरी, और बच्चे भी। बाद में स्पीड बहुत कम हुई है मेरी, असल में तो ये पूरी स्पीड में स्कोर पूरा काफी पहले कर चुका था जब पैसे वैसे नहीं थे मेरे पास, ठीक है ना, उस वक्त हम ज्यादा खुश थे। तो अब वो क्या है, क्या कह रहा था मैं, वो तवे पे बिठा, हाँ, फैक्ट्री का मालिक है। खुश रहने का आपको गुर बता रहा हूं मैं, जब तक अल्लाह पे एतमाद तवक्कुल नहीं होगा, दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझोगे, किसी का बाप भी तुम्हें खुश नहीं रख सकता, कुछ भी कर लो, अमरीका जाके भी टेंशन में आओगे। और अगर अंदर से खुश हो गए ना, हकीम अख्तर साहब का बड़ा प्यारा शेर है यार, वो फरमाया करते थे, दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार। जब दिल बाग बाग होता है ना, दिल में खुशियां होती हैं, तो हर शय में बहार टपकती हुई नजर आती। दिल बयाबा हो गया, आलम बयाबा हो गया। जब दिल में गुलिस्तां खत्म हो गया ना, खुशी खत्म हो गई, तो बाग में भी आपको खिजां का मौसम नजर आएगा। बड़ा प्यारा शेर है, दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार। चाहे खिजां का मौसम भी हो ना, उसमें भी लाइफ को इंसान क्या करता है, इंजॉय करता है। तो और दिल बयाबा हो गया, आलम बयाबा हो गया, तो अंदर की खुशी का मेरे भाई जेब से ज्यादा ताल्लुक नहीं। मैं ज्यादा इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा सा है थोड़ा सा तो है, बिल्कुल ही खाली होती है तो थोड़ी सी टेंशन होती है। तो वो वाक्य सुना था, वो एक साहब इसी मस्जिद में, بالکل ایسے سفید کرتا شلوار ٹخنوں سے بالکل سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک اور ایسے نیٹ کلین. اچھا میرا ان کے ساتھ ایک ہفتے سے ٹاکرا ہو رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بندہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ لطیفہ سناؤ ہنسی نہیں آتی جس کمبخت کو, اس کا مطلب وہ ٹینشن میں ہے نا, کیا کیا خیال ہے بھائی. تو مجھے لگا کہ یہ ٹینشن ہے اس کو. تو میں نے ان سے ایک دن کہا, خود مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, بہت پرانا قصہ ہو گیا اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے, یہ سارے ایکسپائر قصے میں سنا رہا ہوتا ہوں, 10-10 سال پرانے جو بڈھے ہو چکے ہوں گے یا ان کی حافظہ, ویسے بھی اتنی ٹینشن میں حافظہ 10 سال پرانا قصہ یاد نہیں رکھتا. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا تجھے کیا ٹینشن ہو گئی ہے, سمجھ رہے ہو, کہا نہیں لیکن دل چاہ رہا تھا کہ ابے تیری فیکٹریاں چل رہی ہیں, تیرے پاس گاڑی دیکھ, گاڑی دیکھ تو اتنی بڑی غصہ تو آئے گا نا, تیرا گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, بیوی بچے خوش. میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا بھائی صاحب. کہنے لگے کہ یار مجھے ہر وقت ایک خوف رہتا ہے, میری اتنی بڑی فیکٹری ہے کوئی نقصان نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے, کیونکہ واقعات تو ہوتے ہیں, کھرب پتی لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں, ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھی. تو کہہ رہا مجھے بھی ڈر ہے کہ اگر یہ سب ختم ہو گیا تیرا کیا ہوگا کالیا, سمجھ رہے, انہوں نے تو نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں میرا کیا بنے گا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو آپ دیندار ہو ہی نہیں, آپ دیندار, صالح علیہ السلام تھے, ہود علیہ السلام تھے نا, تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا نصیحت کی کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. پیغمبر کا کام برائیوں سے روکنا ہوتا ہے نا. پیغمبر نے کہا اے میری قوم تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حرام پیسوں سے بنا رہے ہوتے نا تو چلو بات ہے, وہ حلال پیسوں سے ایسے گھر بنا رہے تھے. کیسے, پہاڑوں کو چھینی ہتھوڑا لے کے تراشتے تھے. کتنی محنت لگتی ہوگی یار, ایک ہوتا ہے سیمنٹ بجری لا کے 6 مہینے میں بلڈنگ کھڑی کر دیں, سمجھ میں آتا ہے, ایک چھینی ہتھوڑے لے کے سنگ مرمر کی چٹانوں کو تراش رہے ہیں, کچن بنا رہے ہیں, بیڈ روم بنا رہے ہیں, محل بنا رہے ہیں, یار کتنا ٹائم, اور اتنی مضبوط عمارت کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی. اب تک ہیں وہ عمارتیں, میں نے ترکی میں بھی دیکھے ایسے غار. انہوں نے کہا کمبختو تم نے 4000 سال زندہ رہنا ہوتا تو کتنی محنت سمجھ میں آ رہی ہے, کتنے سال زندہ رہ لو گے, 50 سال 100 سال, اس حساب سے گھر بناؤ نا. لال لکم تخلدون, ایسے لگتا ہے جیسے تم نے دنیا چھوڑ کے کبھی جانا ہی نہیں ہے. کافر یا جو بیوقوف اور احمق مسلمان, وہ دنیا کو مسافر خانہ کمبخت سمجھتا ہی نہیں ہے. ہر شخص 90-90 سال کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں پلاٹ خریدنے گھر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں, 60-60-70-70 سال میں. بھائی تم رہ کتنی گئی ہے تمہاری زندگی, زندگی کتنی رہی. میں آپ کو اپنا بتاؤں, میں 50 سال کا ہونے والا ہوں, مجھے رہ رہ کے خیال آتا ہے یار اب گھر کیا بنانا, میں ہو سکتا ہے بنا لوں اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے تو مجھے لگتا ہے بے وقوفی. ابے ابے آپ 50 سال تو گزر گئی, رہ کتنے گئے, صحیح ہے نا, 10-20 سال بہت زیادہ رہ گئے ہوں گے. تو کیا 10-20 سال کے لیے کیا کروڑوں روپے پھونک کے آدمی بیٹھ جائے کہ میرا گھر میری اینٹ, ابھی جنازہ اٹھتے ہوئے تکلیف ہی ہوگی, کیا خیال ہے, کرائے کے گھر سے جنازہ اٹھا چل بھائی ختم. ہاں اپنے بیوی بچوں کے لیے اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو ٹھیک ہے, سوچ لے کہ چلو یار میرے بعد ان کو کوئی گھر میسر ہو, اپنے لیے تو ہمیں ابھی تک نہیں آیا, ابھی نہیں آتا ہمیں. تو اور یہ تو جب ہے جب میرے بھائی جب یقین بھی ہو کہ 20-30 سال زندہ رہیں گے. یہاں تو کراچی میں تو ڈاکوؤں کا اتنا راج ہے, ایک سیکنڈ کی خبر نہیں. آج بھی ایک ڈاکو نے بندہ مار دیا, پھر سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے خلاف. میرے اس بیان پہ سندھ گورنمنٹ نے بہت احتجاج کیا, وہ نہیں میں نے 27 رات کو بیان کیا تھا, مجھے سندھ حکومت سے کوئی بیر نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا 27 رات کو سندھ حکومت کے خلاف بد دعا ہوگی. کن لوگوں کے خلاف, سندھ حکومت میں ہر شخص کے ہم خلاف نہیں ہیں. میں نے بد دعا کا ان لوگوں کے خلاف کہا جو اس قتل کے ذمہ دار ہیں. کچھ کوئی لوگ تو ہے نا سندھ گورنمنٹ میں جن کے پاس اختیارات ہیں ڈکیتی روکنے کے, کیوں نہیں روک رہے, پولیس کے اختیارات کیوں نہیں بڑھا رہے آپ, اس کا مطلب آپ خود ملے ہوئے ہو. تو اتنا کراچی کی سڑکوں پہ خون بہ رہا ہے, اتنا خون بہ رہا ہے. آج پھر ایک 24 سال کے لڑکے کو مار دیا, میڈیا والے اس کے باپ کے پاس گئے, اس نے کہا میں کیا کروں گا انٹرویو دے کے, میرا تو گیا بیٹا, میرے پاس لوگ آ رہے ہیں روتے ہوئے, میرا بیٹا مار دیا, میرا فلاں مار دیا, فلاں کا شوہر مار دیا. یہ روز کے واقعات ہیں, روز کے واقعات. کوئی گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی, کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا. تو ہمیں چیخنے تو دو بھائی, بولنے تو دو ہمیں. तो यहां तो ऐसे हालात हैं भाई, यहां तो आप किसी भी वक्त कोई डाकू आपको 20-20 हजार रुपए के पीछे डाकू कत्ल करके चला जाता है, 10-10 हजार के पीछे डाकू बंदा मार देता है। तो इतना डाकुओं का राज है सिंध में। आप पानी नहीं दे रहे, आप बिजली नहीं दे रहे, इंसान को जान तो महफूज करो यार, इतनी धांधली तो दुनिया में कहीं भी नहीं होती। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, नबी ने क्या कहा अपनी कौम से कि तुम घर ऐसे बनाते हो जैसे तुमने इसमें हमेशा रहना है, हालांकि वो अपने जायज पैसों का घर बना रहे थे। इससे पता चला कि दीवारों ईंटों से मोहब्बत, दुनिया से दिल लगाना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो मैंने वो जो थे ना सफेद कुर्ता शलवार पजामा, मैंने उनसे कहा आप पता है आपने फैक्ट्री तो बना ली, हमारे हजरत मिसाल दिया करते थे सांप पाल लिया, सांप को संभालने का मंत्र नहीं सीखा। दौलत एक सांप की तरह है, अगर आपके दिल में घुस गई तो डसेगी आपको, दिल से बाहर बाहर है तो बहुत इंजॉय कराती है इंसान को लाइफ में। दौलत का मजा भी दीनदार लोग उड़ाते हैं जिनके दिल में दुनिया की, वो इंजॉय भरपूर तरीके से करते भी है, कंजूसी भी नहीं है। वरना हमने बेदीन लोगों को देखा है जिनके पास दौलत आई ना कमबख्त अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे होते। और ये जो मुझे रीवो के ताने देते हैं ना लोग, आपके पास रीवो इतने पैसा, मुझसे 6-6 गुना ज्यादा पैसा है लोगों के पास, फटफटियों पे घूम रहे हैं, हम जैसे हैं ना वैसे नजर आ रहे हैं, समझ रहे हो? नहीं आई मेरा ख्याल है बात? जैसे हैं वैसे क्या हो रहे हैं? और ये जो कुछ लोग हैं ना नाटक, ऐसे गरीबों वाले कपड़े पहन के घूम रहे हैं, जैसे दिल चाहते हैं इन कमबख्तों को ज़कात दे दो, ये ऐसे होते नहीं है। इन कमबख्तों से बोला करो तू सूट टाई पहन ले, कोई अच्छे कपड़े पहन ले, हमें पता है तू इतना गरीब है नहीं, समझते हो कि नहीं समझते? तो जैसे हम हैं वैसे नजर आ रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, बना कुछ नहीं रहे, खा रहे हैं पी रहे हैं, बच्चे भी स्पीड खा भी रहे हैं, पैसा है फौरन गाड़ी खरीद ली। मेरे पास जब पहली दफा पैसा आया था 90,000 रुपए आए थे, कंवारा था उस वक्त मैं, शादी मेरी सॉरी नई नई हुई थी, 4,000 मेरी तनख्वाह थी मदरसे से, मुझे मिले 90,000 रुपए अब्बा की तरफ से ना, मैंने फौरन GTO 125 खरीद ली कावासाकी। मैंने कहा स्टाइल क्या होना चाहिए, अब मेरी जो GTO 125 देख के लोग कहते थे यार ये आदमी करोड़पति है, नहीं भाई करोड़पति नहीं है ये आदमी, 4,000 तनख्वाह से आदमी करोड़पति नहीं हो जाता। आदमी ये कह रहा है कि यार मैं इतना लंबर, मेरी रोजाना 30 किलोमीटर जाने में 30 किलोमीटर आने की ड्राइव है, तो ड्राइव कंफर्टेबल होनी चाहिए, स्टाइल निराला होना चाहिए। तो वो ऐसी, फिर मैं साउंड मेकर के पास, आज एक सैलेंसर वाला बंदा आया हुआ था ना, कुछ लोग मिलने के लिए आए सैलेंसर का काम करते हैं, मुझे अपनी GTO 125 याद आ गई। मैं साउंड मेकर के पास जाके उसका सैलेंसर बनवाया करता था कि जब ये एक्सीलेटर दूं तो टक 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 की आवाज आए इसमें से, कावासाकी GTO से आवाज कैसी आती है टक टक की, बड़ी खूबसूरत, मुझे आवाज की वजह से वो पसंद थी। तो मैं जब बैठा हुआ था ना वो साउंड मेकर लोग, उन्होंने कहा कि यार हम गाड़ियों का काम करते हैं। मैंने कहा फिर आप ऐसा करो, कुछ लोग अपनी बीवियों की चीखो पुकार से बहुत परेशान है, तो कोई ऐसा सैलेंसर बनाओ जो बेगम के फिट हो सके। मैंने कहा इतनी साइंस ने तरक्की की है, कुछ औरतें अपने शोहरों की चीखों पुकार से परेशान है, तो उसका तरीका, मैंने कहा यह मजहब की बहुत बड़ी खिदमत होगी। आज असर की बात है, कह रहे हैं कैसे होगी, मैंने कहा देखो भाई अल्लाह मियां ने कहा है इन अनकरल अस्वाती लसौतुल हमीर, आवाजों में सबसे बुरी आवाज गधे की होती है, क्योंकि गधे का बात करने का स्टाइल ठीक नहीं होता, बात ठीक होती है चीखता बहुत है, वही बात आराम से कही जा सकती है, लेकिन पूरा फेफड़ों में ना हवा भर के पूरी स्पीड के साथ निकालेगा गधा भाई, आराम से बिल्ली मियाऊ मियाऊ करेगी, आराम से समझा देगी मुझे पानी चाहिए, घोड़ा हिन हिनाएगा भाई, खुश होगा तो हिन हिनाएगा, तो ये पता नहीं क्या करता है, एकदम शेर भी चीखता है एक दफा चीख के चुप हो जाएगा, क्या ख्याल है? गधा क्या करेगा, पूरा फेफड़ों में ना अपनी हवा भरेगा पूरी, फिर एक दफा निकालेगा, फिर वापस हवा लेकर आएगा, फिर निकालेगा, चीखता ही रहेगा। तो बाद मर्द ऐसा कर रहे होते हैं घरों में, कभी तमीज से बात बोलो करते ही नहीं है। खवातीन कहती है हमारा मियां जब घर में आता है ऐसा लगता है चंगेज खान ने बगदाद पे हमला कर दिया है। तो मैंने कहा कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनके लिए अच्छा सा सैलेंसर बना दो, कुछ आदमी ऐसे हैं जिनके लिए अच्छा सा सैलेंसर बना दो, कहते हैं हम तो गाड़ियों के सैलेंसर है। मैंने कहा साइंस की तरक्की का फिर फायदा क्या हुआ, इतनी तरक्की की साइंस ने। मैंने कहा ये मजहब की खिदमत होगी, इसलिए कि अल्लाह को चीखना चिल्लाना पसंद नहीं है, जब तुम सैलेंसर लगाओगे हम मर्दों के फिट कर देंगे, खवातीन के भी फिट कर देंगे, घरों में सुकून का माहौल पैदा हो जाएगा, खुश कौन होगा इससे, अल्लाह खुश होगा। जन्नत में जाना चाहते हो, मैंने कहा कोई ऐसा सैलेंसर ईजाद करो अल्लाह के बंदो, नहीं समझ में आ रही, उनके समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूं। खैर तो वो जो आए थे ना सफेद कपड़े नीट क्लीन, मैंने उनसे कहा भाई साहब आपने दीनदारी का गेटअप बना लिया, आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं। एक होता है अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे, पानी के चश्मे होते हैं ना सवाद मर्दान में कैसे खूबसूरत लगते हैं, एक होता है उबलते हुए गटर जो अंडा मोड़ पे आपको जगह जाए। यहां भी अभी देखें आप लोग जो नमाज पढ़ने आते हैं गटर फलांग के आते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह गटर का पानी है, कैसा चश्मा खूबसूरत बह रहा है। बहता पानी पाक होता है लेकिन ये फिर भी ना पाक है, इतना गंदा है इतना गंदा है कि बहके भी ना पाक है ये। तो मैंने कहा आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं। मैंने कहा आप फर्ज करो आपकी फैक्ट्री को अल्लाह ना करे आग लग गई, अभी फर्ज कर लो जो खतरा है ना वो फर्ज कर लो, अभी आग लग गई। हमेशा एक्सट्रीम लेवल पे जाओगे ना, जैसे मैंने दूसरी की ना तो मुझे धमकियां ये कर देंगे। मैंने कहा बंदूक लेके सर पे गोली मार दो, कत्ल करके कीमा बना के कौओं को खिला दो, मैं किसी के दबाव में आके तलाक नहीं दूंगा बस। तो मैं एक्सट्रीम पे पहुंच गया था ना, और मैं जहनी तौर पर तैयार था कि जान से मार दें, वजह उसकी है कि मर जाएंगे शहीद हो जाएंगे। अगर हम बेगैरती के साथ जिंदा रहे तो ससुराल को क्या मुंह दिखाएगा आदमी यार, वो बोलेंगे अच्छा उस वक्त तो बड़ी बातें कर रहे थे चार शादियां, अभी ससुराल का दबाव आया तो फौरन तलाक दे दी, इस जिल्लत की जिंदगी से बेहतर नहीं है कि इज्जत के साथ मर जाए आदमी, क्या ख्याल है भाई, मरना तो बाद में भी है पहले भी, और इतना होता नहीं है कोई मारेगा नहीं। लेकिन एक बात कर रहा हूं कि तो एक्सट्रीम पे जाओगे ना तो छोटी टेंशन बर्दाश्त करना आसान। तो हम तो एक्सट्रीम पे गए हुए थे, हमने कहा ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे भाई, तो हम तो यही होगा ना मर जाएंगे, जेल चले जाएंगे, 6 महीने की जेल है दूसरी शादी करने पर अगर बीवी इजाजत ना दे केस करते। हमने कहा चलो 6 महीने जेल जाएंगे, थोड़ा पुराना 3 दिन की टेंशन जेल में होती है, 3 दिन के बाद आदत हो जाती है बेइज्जती याद रखो फील थोड़े देर के लिए होती है, उसके बाद क्या हो जाती है यूज टू हो जाता है आदमी। तो ये इंसान को अल्लाह ने ऐसी फ्लेक्सीबिलिटी रखी हर चीज में यूज टू हो जाता है थोड़ी देर। अल्लाह बचाए जेल से, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर, कत्ल होने से भी बचाए अल्लाह ताला, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मोटिवेट करने के लिए। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप फर्ज करो आपकी फैक्ट्री को आग लगेगी, नहीं लग गई है, सारा पैसा हो गया आपका बर्बाद। मैंने कहा अब क्या होगा बताया आपको, कह रहे भाई जाहिर काम पे लगेंगे ना वो ये बातें सुन के। मैंने कहा अब ये होगा कि गया सब कुछ गया, आप घर में आओगे मुंह लटका हुआ होगा, बेगम सब बर्बाद हो गया, सबसे पहले ये घर बिकेगा, क्या ख्याल है, यही होगा ना। बेगम बोलेगी नहीं आप बोलना हां, टेंशन लो नहीं हमेशा दो, ऐसे मौके पे चीखना जायज है दबाव में लेने की। बोले बिकेगा तेरा बाप भी इसको भेजने से, क्योंकि मैं खाना है ना पहले भाई, खाना ही नहीं है तो क्या करूंगा मैं, घर बिक गया। मैंने कहा आप टमाटर की रेड़ी खरीद लेना, घर बेचने से 5-6 रेड़ियां आराम से आ जाएंगी, ठीक है, इतना तो घर तो था ना उसके पास, ऐसा थोड़ी कि उधर भी आग लग रही है घर भी आग, ऐसी तो फिर कयामत ही आ गई है फिर मेरा ख्याल है कोई ऐसी फर्जी चीजों का तो कोई वो ही नहीं है ना। मैंने कहा आपने 4-5 टमाटर की रेड़ियां खरीद ली, आपको जाहिर है बेइज्जती फील होगी, बेइज्जती का उसूल है 3 दिन से ज्यादा फील, समझ रहे हो, हमेशा याद रखो बेइज्जती 3 दिन से ज्यादा फील नहीं, 3 दिन में डॉक्टर भी कहते हैं जो रोजे रखते हैं ना 3 दिन तक तकलीफ होती है, 4th दिन कम हो जाती है, चाय छोड़ दो 3 दिन तक तकलीफ, 4th दिन नहीं होती फिर। तो मैंने कहा टमाटर पे आ जाओ आप, बेइज्जती होगी लोग कहेंगे इतना बड़ा आदमी टमाटर बेच रहा है, तो आपको जब बेइज्जती फील हो ना कुछ तो नेचुरल है वो तो, लेकिन आपने क्या कहना है भाई, थोड़े दिनों में टमाटर बेचने वाला और फैक्ट्रियों का मालिक दोनों की लाश पे एक जैसे कीड़े होंगे, जो बहरिया टाउन का मालिक है भट्टे पे लेटेगा कि नहीं लेटेगा एक दिन, क्या ख्याल है, कब्र में जाने के बाद मिट्टी डाल के सारे केसेस खत्म, वहां के केसेस खुलेंगे फिर क्या होगा, क्या ख्याल है भाई, अगर होंगे मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, बिलफर्ज अगर हुए, नहीं हुए तो अल्लाह बख्शिश करे सबकी। तो भाई थोड़े दिनों की कहानी है, इतने बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग जिन्होंने अपने मुलाजिम रखे हुए थे 30 साल 40 साल के बाद मुलाजिम भी कब्र के अंदर, साथ वाली कब्र में सेठ, وہاں فرق پتہ چلتا ہے کہ کون سی قبر سیٹھ کی ہے اور کون سی قبر ملازم کی. میں نے کہا بھائی مر کے سب 40-50 سال کے بعد سب نے کیا ہو جانا ہے, مٹی میں تحلیل ہو کے برابر, بندہ رہا نہ بندہ نواب, سب برابر. تو جب بھی کوئی یوں دیکھے نا ابے تو کیا تھا اب کیا کر رہا ہے, تھوڑے دن کی ٹینشن ہے, اس کے بعد تیرا بھی وہی حشر ہونے والا ہے اور میرا بھی وہی حشر. میں نے کہا 3 دن بےزتی فیل ہوگی, اللہ کے لیے برداشت کرو, ہر غم پہ اجر ملتا ہے, ہر غم پہ صبر کرو گے اللہ کیا دے گا اجر. پھر میں نے کہا ڈبل روٹی مکھن ناشتے میں گئے تیل لینے, پھر دیکھنا ناشتہ سوکھی روٹی رات کی بچی ہوئی ہو چائے میں ڈبو کے کھا لینا. اس کا 2 ٹائم کی روٹی صحت کے لیے بہترین ہوتی ہے. شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا میں, صرف موٹیویشن کے لیے. دیکھو میں نے کل رات کھانا کھایا تھا, اب تک نہیں کھایا, فٹ فاٹ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا؟ آپ مذاق سمجھ رہے ہوں گے, میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ. گارڈوں کے ساتھ میں نے کل رات کھانا کھایا ہے 10 بجے اور ابھی کیا بج رہا ہے 9 بج رہے ہیں, اب تک نہیں کھایا میں نے کھانا, بالکل فٹ فاٹ. کوئی کمزوری محسوس سی بھی ہو رہی ہے آپ کو؟ کھجور کھائی ہے میں نے, صبح بھی کھائی تھی تھوڑی سی, 6-7-8-10 دانے کھجور کے, اور ابھی مغرب میں کمزوری تھوڑی سی محسوس, تو کھجوریں کھا لی اور وہ لیمن والا شربت شہد ملا کے پورا گلاس بھر کے پی لیا, مدظل لا لیا, شربت کھا لیا, کھجور کھا لیا. اتنی سی بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ویکنیس محسوس نہیں ہو رہی. آپ سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب کی ہیلتھ کوئی بہت ہی خاندانی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, وہی ہے جیسے آپ ہیں. کچھ چیزیں ہم نے کھوپڑی میں خامخواہ کی مسلط کر لی ہیں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور زیادہ اچھا کھانا کھایا ہوا ہوتا پھر اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو آپ کہیں گے اتنے نیک کہ کھانا کیوں نہیں کھایا, ٹائم نہیں ملا یا کچھ مصروفیت ہو گئی ہوگی یا کیا ہوا ہوگا, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن غربت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے. کل آپ ایسا نہ ہو کچھ زکات وکات لا کے دیں, سب میری پراٹھا کھا لینا. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جتنا ہم کھا رہے ہیں, دیکھو رات کو میں نے 10 بجے کھانا کھایا ان کے ساتھ, گوشت تھا وہ قربانی کا, انہوں نے بڑا مزیدار بنایا ہوا تھا, کھا لیا بس. تو رات کو نیند تو آج کل کراچی میں آ نہیں رہی ہے کسی کو, تو فجر کے بعد مجھے جامع ترشید جانا تھا, تھوڑی دیر میں سویا ہوں تو ناشتے کا موقع نہیں ملا, میں جامع چلا گیا, وہاں بچوں کو پڑھاتا رہا, پھر واپس آیا تو موقع نہیں ملا, سونے کے لیے لیٹا تو خاتون آ گئی ٹھک 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 ٹھک, ٹھیک ہے نا. تو پھر اب اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ کچھ کھا لینا چاہیے. میں نے کہا اب کھایا تو بیان نہیں ہوگا, ٹون ہو جاؤں گا. تو میں نے کیا کیا, لیمن ڈال کے پانی میں اور شہد ملا کے چند کھجوروں کے ساتھ کھا لیا, مدثر آلیا, ایسی انرجی آ گئی. ابھی کچھ بالکل بھی دل نہیں کر رہا کھانے کا. ہاں گھر میں بول دیا کہ پکا دینا, ایسا نہ ہو کہ زیادہ نہ ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کا کھانا پینا بند, تو سوکھی روٹی صبح چائے میں ڈبو کے کھانا, 3 دن محسوس ہوگا کہ غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. اس کے بعد اس روٹی سے آپ کو ایسی محبت ہو جائے گی. میں نے روٹی اور چائے کے ساتھ 90-90 سال لوگوں کو جیتے ہوئے دیکھا ہے. بلوچستان میں گیا ہوں, ایسے لوگ 90 سال عمر ہے, کھاتے کیا ہیں بھائی؟ غربت ہے سائیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے. کیا کھاتے ہو؟ روٹی پانی, کبھی بکری کا دودھ مل گیا تو مل گیا. 80-90 سال غریبوں کے لیے اللہ نے پیکج ہی الگ رکھا ہوا ہے. یہ امیروں کے ہیں کہ وٹامن سی اور وٹامن فلانا اور آئرن اور ڈمکانا, یہ ہے ضرور, ڈاکٹروں کی میں نفی نہیں کر رہا, یہ ان لوگ کے لیے جن کی جیب میں کیا ہے پیسے, جن کے پاس پیسے نہیں ہے, سارے وٹامن اللہ نے روٹی میں ڈال دیے. ہوں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کا, ہمارے حضرت نے بہت عرصہ غربت میں وقت گزارا ہے, مدرسے کی تھوڑی سی تنخواہ تھی لیکن جیتے ایسے تھے سر اٹھا کے جیسے سب سے بڑے سیٹھ ہی ہوں. حضرت کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہوئی, حضرت ڈاکٹر کے پاس لے گئے, ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں, ان کے لیے پھل کھلائیں بہت ضروری. حضرت فرماتے ہیں میرے پاس تو پھلوں کے پیسے ہی نہیں تھے. تو میں نے دل میں سوچا کہ بھائی ڈاکٹر نے اپنے علم کے مطابق بالکل درست بات کی ہے, لیکن اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے. اگر میری بیوی کو پھلوں کی واقعی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا, جب نہیں دیے اس کا مطلب ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر کی نفی نہیں کر رہے, وہ اپنے علم کے حساب سے بات کر رہے. توکل الگ چیز ہے بھائی, ڈاکٹری الگ چیز ہے. ہاں پیسے ہیں تو پھر یہ حدیثیں نہیں سناؤ. آج کل کمبخت کنجوسی دکھا رہے ہیں, بیوی کو نہ تربوز کھلا رہے ہیں نہ خربوزہ کھلا رہے ہیں, جب وہ کہ دیکھو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی اہلیہ پھل کے بغیر جی لی تھی, تو حضرت کے بعد جب پیسہ آیا تو پھر سب کچھ کھلایا. تو غلط توکل کا استعمال مت کرو. حضرت کی تو تنخواہ بہت کم تھی, مدرسوں میں کمی تنخواہ ہوتی ہے, اللہ ہدایت دے ہم سب مدرسے والوں کو. تو حضرت نے کہا کہ بھائی گنجائش نہیں ہوگی، حضرت کا انتقال ہو گیا اور حضرت کی اہلیہ ابھی 90 سال میں جا کے انتقال ہوئے ان کا، سمجھ رہے ہو کب انتقال ہوا؟ 90 سال میں. تو میں نے ان سے کہا، اور چلو انتقال ہو جائے گا نا تو ہو جائے گا، تو جو زندہ ہیں کیا ان کا انتقال نہیں ہوگا؟ کیا کیا خیال ہے بھائی؟ کسی نہ کسی طریقے سے انتقال تو ہونا ہے نا. پورے وٹامن لے کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے. ڈائٹ پلان ڈاکٹر نے بتایا، اتنے وائٹامن ڈی کے کیپسول لینے آپ نے، اتنے وائٹامن کے ٹو تاکہ وہ وائٹامن ڈی کو ایبزارب کر سکے، کے ٹو بھی کھا لیا، وائٹامن ڈی بھی، اور وائٹامن سی کی اتنی کوانٹیٹی، اور کیلوریز آپ نے نا اتنی ڈبے پہ لکھ لکھ کے اتنا واچ لیے. تو یہ سیمسنگ واچ اس چکر میں نہیں ہے، تو یہ صرف سلپ ناپنے کے لیے. تو یہ اتنی کیلوریز لے کے پورا فٹ، ایک دم باڈی فٹ، ٹرک کو چل کے چلا گیا. نہیں آئی بات؟ پوری ایک دم سیٹ اپ سے چل رہے تھے، ڈاکٹروں کے مشورے کے، ڈاکٹر خود اپنے مشورے پر اتنا عمل نہیں کر رہا تھا جتنا یہ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کر. گھر سے باہر نکلے، پتا چلا یہ ڈھکن بھی غائب ہے. وہ سمجھے کہ ڈھکن ہے، پاؤں رکھا ڈھکن سمجھ کے، وہاں ڈھکن نہیں تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کا کوئی وٹامن سے تعلق ہے؟ آپ سمجھتے ہو امریکہ میں حادثے نہیں ہوتے؟ بھائی وہاں بھی بہت حادثے ہوتے ہیں. جاپان میں حادثے نہیں ہوتے؟ میرے ذہن میں جاپان کا ایک امیج تھا، اور ابھی بھی ہے وہ، کہ بڑی اسٹیبل اور آرگنائز قوم ہے، ہر چیز تمیز سے ہوتی ہے، حادثات کا ریشو بالکل بھی نہیں ہے. میں ٹوکیو لینڈ کیا ہوں، اگلے دن ٹوکیو میں جہاز تباہ ہو گیا. ہم ٹوکیو میں ہی تھے، کیسے تباہ ہوا ہے؟ جہاز کھڑا ہوا ہے، دوسرا جہاز آ کے دوڑ کر کے مارتا ہوا چلا گیا، اس کو پیلتا ہوا نکل گیا. ابے بھائی تم تو جاپانی ہو یار. جب جہاز لینڈ کر رہا تھا اوپر سے، یہ کوئی چھانگا مانگا کے ایئرپورٹ تھوڑی ہے چیچا وطنی کا، یہ کہاں کا ایئرپورٹ ہے؟ جاپان کا، اور وہ بھی ٹوکیو کا. جہاز لینڈ کر رہا ہے، کوئی فنی خرابی بھی نہیں ہے، ہم کہیں دوسری کمپنی کا مسئلہ ہے. جہاز لینڈ کر رہا ہے، فوراً نیوز چلی کہ بھائی ایک جہاز تباہ ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے. کیسے مر گئے بھائی؟ یہ جاپان ہے، اس میں کیوں مرے؟ ایئرپورٹ میں اتنی بدنظمی بھائی. ایسے مرے کہ اصل میں ایکچولی جب جہاز نے لینڈ کیا تو ایک اور رن وے پہ کھڑا ہوا تھا، پورا جہاز نہیں تھا، آدھا رن وے پہ تھا، آدھا باہر تھا. کوئی چائے پینے کے سلسلے میں کچھ خیال آیا ہوگا اس کو، پتہ نہیں کوئی میٹر گھوم گیا ہوگا. وہ اترا ہے اور ہٹ کر کے وہ چھوٹے جہاز کے تو پر اڑا دیا اس میں، سارے ہی مر گئے. اس میں بڑے جہاز میں آگ لگی، تو اگر ہمارے لگتی تو ہم سب جل چکے ہوتے، لیکن وہ تمیز کی قوم ہے. تو انہوں نے جو جو لوگوں کو ہدایات دی نا، لوگوں نے لائن بنا کے جہاز کے دروازے سے نکلے، سب بچ گئے. ہمارے یہاں تو شاید جب اعلان ہوتا نا جہاز میں آگ لگ گئی ہے، جس کو جہاں سے موقع ملتا بھاگ کے دروازے کو پھنسا دیتا، اور کسی کی بھی جان نہ. وہ تمیز کی قوم تھی، تو جو بڑے جہاز میں سب بچ گئے، لائن لگا کے نکلے آرام سے. جلد بازی نہیں کی انہوں نے کہ بھئی آگ لگ رہی ہے لیکن جو آرڈر ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، تو تمیز سے سارے نکل گئے. لیکن چھوٹے جہاز کو جو ہٹ کیا ہے نا بڑے نے آ کے، اب وہ چھوٹے جہاز میں جیپنیز پائلٹ تھے، اور وہ زلزلہ آیا تھا اس کی مدد کے لیے جا رہے تھے، ان کے سارے وٹامن ٹیسٹ ہوئے تھے، بلڈ ٹیسٹ ہوا ہوا تھا، آئرن کی کمی تو نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جو چھوٹے جہاز میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پائلٹ کی آئی ٹیسٹ 6x6 ہے، شوگر اوکے کی رپورٹ. اگر کوئی انشورنس والا وہاں سروے کے لیے آتا، کہتا ہے اس کمبخت نے 150 سال کم از کم جینا، اس کی فوراً بیمہ پالیسی کراؤ، سب کچھ اوکے کی رپورٹ تھی، بیٹھے ہوئے تھے، زلزلہ آیا اس میں بچ بھی گئے تھے. کمال کی بات یہ، زلزلہ آیا اس میں بچ بھی گئے تھے، شکر ادا کر رہے تھے خدا کا کہ گاڈ چنگ پاؤں کی چاپا ہم لوگ کو تو نے بچا لیا. اللہ نے کہا بیٹا بچا نہیں لیا، تمہیں ابھی موت کے منہ میں لے کے جا رہا ہوں میں، تم ذرا ایئرپورٹ پہ پہنچو تو صحیح، دوسرا جہاز آ کے تمہیں ہٹ کرے گا، تمہارے پرخچے اڑا دے. وہ تو بیٹھے بیٹھے گئے ہیں دوسرے جہان میں، اتنا بھی نہیں موقع ملا کہ وائٹامن کی کوئی کمی ٹیسٹ تو کر لیتے. بھائی وٹامن کی کمی ہوتی ہے، ٹیسٹ کرتا ہے آدمی، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا جہاز آیا اڑاتا ہوا نکل لیا. وہ کہہ رہے ہیں ایسے وٹامن کا کیا کرنا ہے بھائی ہم نے؟ اب برزخ میں جا کے وہ رپورٹیں دکھا رہے ہوں گے فرشتوں کے، یار اس بندے کو تم نے مارا، لگ رہا ہے کہ اس کی موت آئے. تو فرشتے کہے گا یہ رپورٹیں رکھ اپنے پاس، ہمارے پاس بڑی اس سے بھی اچھی اچھی رپورٹوں والے آئے ہوئے ہیں، اس سے بھی اچھی اچھی رپورٹوں والے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. دوسری خبر میں دیکھ ان کے چترول تجھ سے زیادہ لگ رہے ہیں. تو رپورٹیں لے گئی ایک طرف، اور جو بغیر رپورٹوں کے ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ 90 سال جی رہے ہوتے ہیں. میں اپنے نانا کی اکثر مثال دیتا ہوں، 40 سال ہم نے ان کو شوگر میں دیکھا، یعنی ہماری پیدائش سے پہلے कि वो शुगर में चले आ रहे थे, आज दुनिया से गए, आज गए ऐसे ऐसे बीमार, 99 साल निकाल लिए उन्होंने, सही है ना, जो उनकी अयादत के लिए जाया करते थे ना वो निकल गए। हमारे महल्ले में एक और साहब है, नाम नहीं लूंगा, मैं जब 2006 में यहां आया ना, उस वक्त मैंने देखा उनको राशा है और कांपते हैं और दिल की बीमारियां, पानी जरा सी कमी हो एकदम बेहोश होने लगते, मुझे लगा ये आज गए कल गए, आज गए कल गए, आज गए कल गए, और वो भी ये कि मैं तो बस जा रहा हूं, मैं तो बस मरने वाला हूं। हीट स्ट्रोक नहीं हुआ था जब रमजान में चंद साल पहले, पहले रोजे में मैंने उनको मना किया आप रोजा मत रखो, आपको पानी, उनके जरा सी कमी हो जाए ना पानी की वो फौरन मरने लगते हैं, हर वक्त पानी की बोतलें लेके घूमते हैं वो। मैंने कहा मत रखो रोजा, मरोगे भाई तो हराम है, मैं मुफ्ती होके तुम्हें फतवा दे रहा हूं, नहीं शौक है। रोजे में गिर गए, घसीटते हुए पानी के पास लेकर गए उनको, क्रॉलिंग कराते हुए मुंह में पानी डाला फिर उठ के बैठ गए। तबलीगी इज्तिमा में गए, वहां उल्टे हो गए ना, पानी नहीं मिल रहा वो इज्तिमा के अंदर, या तो तुम पानी तो साथ रखो, वो था खत्म हो गया। मैंने कहा गए गए मर गए बस इन्ना लिल्लाह। इतने जनाजे वो दफना चुके हैं ना जो उनकी ताजियत के लिए आते थे, आयादत के लिए आते थे। हर थोड़े दिन में बंदा आया हुआ होता था, तारिक भाई नाम है, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, तारिक भाई बस मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह आपको जिंदगी दे। एक महीने बाद ऐलान होता है जो साहब आए थे ना उनका इंतकाल हो गया। उनका क्या हो गया, अभी एक हफ्ता पहले मैंने उनको फोन किया, कहते हैं मुफ्ती साहब बस मैं तो जाने वाला हूं। मैंने कहा तारिक भाई रिपोर्ट ये कहती है कि आप, मैं चला जाऊंगा आप नहीं जाओगे, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत दे और उम्र। मैंने कहा बहुत आपने लोगों के साथ मजाक किया है, ये मजाक मजीद आप भी देखोगे ना, आप बोलोगे ये बंदा कल तक जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन यार अल्लाह ताला खींचते हैं तो खींचते चले जाते हैं, और उधर जापानी सारी रिपोर्टें क्लियर, जहाज आया उड़ाता हुआ निकल गया। हमारे महल्ले में एक अजीब वाक्या हुआ, एक साहब की डेथ हुई है, कब्र में ना लंबे थे वो, तो उनकी जब कब्र तैयार हुई है तो गोरकन ने कहा यार ये एक बंदे को बुलाया, हट्टा कट्टा फिटफाट बिल्कुल। अच्छा वो बंदा क्या करता था, हमारे इमाम साहब जुम्मे में दुआ मांग रहे होते थे, वो उठ के चला जाता था, कह रहे अरे कोई नहीं कबूल होने वाली, ऐसे ना थोड़ा सा रिकॉर्ड भी लगाता था इमाम साहब का, कहते हैं ऐसे ही तो मांगते रहते हैं मौलवी लोग, नमाज पढ़ने आता था लेकिन इस तरह की बातें करता था। एक दिन क्या हुआ जी, किसी का इंतकाल हो गया तो गोरकन ने कहा नापना है, बिल्कुल आपके साइज का आदमी था अगर आप लेट जाए कब्र में। उन्होंने कहा ठीक है मैं लेट के देखता हूं, लेटे बिल्कुल जी सही है साइज ना, उठ गए ठीक है जी दफना दो। अल्लाह की कुदरत, जिनको दफनाना था ना उनके गांव से फोन आ गया, हमने यहां नहीं दफनाना गांव भेज दो, और इनको हार्ट अटैक हो गया उसी दिन। उसकी वजह से नहीं, खौफ की वजह से नहीं, वैसे ही उसी कब्र में अगले दिन इनको दफनाया है। अब बताओ कोई सोच सकता है कि यार जिस कब्र को नापने के लिए मैं लेट रहा हूं कल रात मेरी इसी कब्र में गुजरेगी, कोई तसव्वुर हो सकता है, ऐसी बेसबाती ऐसी बेवफा दुनिया है, बल्कि ऐसी दुनिया है। लाकिन्नहा खुल्लतुन कद सीत मिन दमिहा फजउन व बलउन व इखलाफुन व तब्दीलु। हजरत काब इब्ने जुहैर कहते हैं ये दुनिया ऐसी चीज है इसकी घुट्टी में बेवफाई और झूठ घोल के पिला दिया गया है, ये दिखाती कुछ है हकीकत कुछ और है, दिखाएगी आपको ऐसे जैसे दुनिया का आपको इसने बादशाह बनाना है, और ऐसे मुंह मोड़ेगी ना चंद सेकंडों के अंदर, दो टके की नहीं छोड़ेगी आपको। इसलिए इस दुनिया को ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है। जो गाड़ियों में घूम रहा है फखर कर रहा है बंगले गाड़ी, बोले अपनी पजामे में रहे, थोड़े दिनों में कहां होगा, कब्र में होगा, मिट्टी में होगा। तभी तो नबी ने कहा कब्रिस्तान जाया करो, कभी कभार उनको देखा करो कैसी गुजर रही है, ठीक ना, वहां जाके तुम्हें भी ख्याल आएगा कल हमने भी कहां आना है। या मैं एकदम कब्रिस्तान गया तो हमारे साथ दो सहाबाब भी थे, मैंने कहा बस हम भी आने वाले हैं। फिर मैंने घर आके भी बताया, मैंने कहा फट्टे पे लेटना है थोड़े दिनों में। हम लोग घर वाले कहने क्या बातें कर रहे हो भाई, कोई अच्छी बात करो। मैंने कहा इसको एक्सेप्ट कर लो, फट्टा सबके लिए है भाई, किसके लिए है, सबके लिए, तो सबने लेटना है फट्टे पे। तो मैंने उनको समझा रहा था, इतना लंबा तो उनको नहीं समझाया मैंने, तो आपको ज्यादा समझा दिया मैंने, हालांकि आपकी तो फैक्ट्री भी नहीं है लेकिन क्या करें। तो मैंने कहा आग लग जाएगी, टमाटर बेचोगे, कह रहे हैं बीवी गुजारा नहीं करेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, गरीब लड़की टमाटर वाले की बेटी से शादी कर लेना, क्या ख्याल है भाई, ये वाली खोला लेके चली जाएगी, कोई बात नहीं, बच्चे दफा हो जाएंगे, ऐसे बच्चों का करना क्या है भाई, जो तुम बाप की गुर्बत में बाप को बाप ही नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, वैसे भी बच्चे कब्र में दफना के चले जाते हैं कि नहीं चले जाते, चले जाते हैं। और इन हर मुसीबत पे जो टेंशन होगी अजर कौन देगा, इस पे
अल्लाह देगा, क्योंकि नेचुरली फिर भी होती है टेंशन। मैं ये नहीं कह रहा कोई पत्थर का बना हुआ है। याकूब अलैहिस्सलाम को टेंशन हुई थी कि नहीं हुई थी बच्चे के बिछड़ने पर, लेकिन उसमें अजर किसने दिया? अल्लाह ने। तो इस पे सबर करने में आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, भाई अजर कौन दे रहा है? अल्लाह सबर करने वालों के साथ होता है, जजा फजा करने वालों के साथ नहीं होता, ना शुक्रे लोगों के साथ नहीं होता। और मैंने कहा जब टमाटर बेचोगे तो फिर भी टेंशन खत्म नहीं होगी, फिर भी टेंशन उस सूरत में खत्म होगी कि जब बीवी भाग गई, बच्चे भी मार्केट से शॉर्ट हो गए, अब आप किसी टमाटर वाली का रिश्ता तलाश कर रहे हो, फिर जब कोई आपके पास आए ना और कहे कैसी गुजर रही है, तो अगर आपने कहा ना बड़े बुरे हालात हैं, तो इसका मतलब आप ना फैक्ट्री में खुश ना टमाटर। फिर आपने बोलना है अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ, रेडी लग रही है, सुबह रोटी खाने को मिल जाती है, भूख में शाम को भी मिल जाती है, अल्लाह का शुक्र है, सर छुपाने की जगह है, ईमान महफूज है, कोई जिस्म को बड़ी बीमारी नहीं है। हदीस का मफहूम है जिसके जिस्म में कोई बड़ी तकलीफ से बीमारी नहीं है, दो वक्त का खाना मिल रहा है, सर छुपाने की जगह है, ऐसे है जैसे अल्लाह ने पूरी दुनिया की दौलत समेट के उसके कदमों में रख दी। नहीं आई बात? तो जिसकी ये सोच होगी वो फैक्ट्री में भी खुश होगा, जिसकी ये सोच नहीं है वो मेरे भाई, जिसकी ये सोच है वो टमाटर बेच के भी खुश होगा, जिसकी ये थिंकिंग नहीं है वो अरबों खरबों रुपए कमा के भी खुश नहीं होगा, टेंशन में ही रहेगा। और सिर्फ रहेगा नहीं, देगा भी टेंशन। जो खुश होता है खुशियां देता है, जो खुद कम बहुत अजाब में हो वो लोगों को खुशियां कहां देगा? तभी तो टेंशन वाले लोगों के पास ज्यादा बैठा ना करो, सही है ना? वो क्या कर रहे होते हैं, हर वक्त मनफी बातें करते हैं, मुल्क के खिलाफ मनफी बातें, सियासतदानों के खिलाफ, ठीक है हम भी सियासतदानों के खिलाफ बातें करते हैं, एक लिमिट में रखो। याद रखो इतना बुरा कोई नहीं होता जितना हम समझ रहे होते हैं, हमको हर चीज में मुबालगा करते हैं, जितना बुरा है उससे थोड़ा सा कम कर लो, कोई थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें भी किया करो, हर वक्त नेगेटिव बातें, वो ये खा गया, वो यूं खा गया, वो ये कर दिया, वो फलाना कर दिया। मैं कभी कोई अच्छी मुंह से पूछ लिया कर यार, कोई अच्छी बात भी निकाल लिया कर भाई, जब भी तेरे पास बैठो उसने ये कर लिया उसने, कुछ लोगों के पास बैठो ना, मुल्क तो कभी भी ठीक नहीं होता भाई, जैसे पहले था 70 साल के बाद भी ऐसे ही रहना है, तो आप अपनी मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करके अपने मुंह को क्यों खराब कर रहे हो भाई, क्या ख्याल है? हमारे एक उस्ताद हैं, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में फलां काम बहुत अच्छा हो गया, दूसरे ने कहा क्या है इससे क्या फायदा, उन्होंने कहा कभी मुंह से ना कोई खुशी की बात, शायद ये बोला कि डॉलर स्पीड से महंगा हो रहा था रुक गया है, एक अच्छी खबर है ना, एकदम भागा जा रहा था ना रुक गया, थोड़ा सा खुश हो ला यार, चलो कोई तो अच्छा काम हुआ ना। लेकिन मुंह पे जो बुरे हो रहे हैं वो मुझे आपसे ज्यादा पता है, आप ये ना समझो कि आपको पता ही नहीं, मुफ्ती साहब हमें पता है क्या क्या उल्टा उल्टा, आपसे शायद ज्यादा पता है, लेकिन मैं यहां बैठ के डिस्कस करूंगा तो वो ठीक नहीं होगा, आपके सर पे जितने बाल हैं और ज्यादा उड़ जाएंगे। तो क्या करना है भाई ऐसी टेंशन का, हमें तो भाई मुल्क से मोहब्बत है, हर कीमत पे हमने मुल्क को बचाना है, पॉजिटिविटी को फैलाना है। हाँ कोई एहतजाज है एहतजाज के साथ रिकॉर्ड कर, जैसे हमने सिंध हुकूमत के खिलाफ रिकॉर्ड करवाया ना, अब भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लेकिन इतना हर वक्त मनफी 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 मनफी, इससे खुदा की कसम कोई ठीक नहीं होता, आपकी खोपड़ी थोड़े दिनों में क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, दिमाग उल्टा हो जाता है, पागल हो जाता है आदमी। तो अल्लाह ताला हमें समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने क्या फरमाया, जल्दबाजी ठीक नहीं है, तो जल्दबाजी का एक मुजहर क्या है, जब पैसा आए तो अल्लाह की राह में खर्च करो, और जब गुर्बत हो तो क्या करो, सबर करो, जजा फजा ना करो, हर वक्त रोना धोना पीटना ये मत करो। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज के बाद थोड़ी देर सवाल जवाब का सेशन होगा, जो बैठना चाहे। खैरियत से? आप कहां से आ रहे हैं जी? रेवन से। कोई सवाल आप लोगों ने यहां से पूछ रहा हो ना तो पूछ लें, पर का बटन जी पूछें। हाँ अभी पूछ लें, माइक है तो इनके हाथ में दे दें। ये अंडा मोड एकेडमी है, एक झेलम एकेडमी है ना, ये अंडा मोड एकेडमी है।
अस्सलाम वालेकुम
जी।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मैं दो सवाल थे मेरे, एक तो ये कि अत्तयात पे बिस्मिल्लाह पढ़ लेता हूँ मैं, भूल जाता हूँ।
गलत है, अत्तयात में बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज नहीं है,
मैं भूल जाता हूँ, और दूसरा मेरा ये है कि अक्सर मैंने जनाजों पे देखा है कि लोग 20-20, 30-30, 15-15 अफराध मस्जिद के बाहर होते हैं, पहरा दे रहे होते हैं और नमाज नहीं पढ़ रहे। मैंने जुम्मे में भी देखा है, जुम्मे के अलावा और दिन में भी देखा है, जरा इस बात में बता दीजिए।
भाई ये कह रहे हैं कि तैयार से इससे पहले मैं बिस्मिल्ला पढ़ता हूँ, गलत करते हैं, बिस्मिल्ला ना पढ़े तैयार से पहले आप। और दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि जनाजे से, जनाजे में बहुत से लोगों को देखा है दाएं बाएं वैसे ही खड़े हुए होते हैं, जनाजा नहीं पढ़ रहे होते। हाँ तो देखो, जनाजा पढ़ना बहुत आसान है, इसके लिए बावजू होना चाहिए और चार दफा अल्लाह अकबर इमाम के पीछे आप कह लें तो जनाजे की नमाज हो जाती है, बता रहा हूँ ना। बाकी जो दुआएं जनाजे के अंदर हैं वो वाजिब नहीं है, वो सुन्नत हैं, समझ रहे हो। वो किसी को नहीं भी आती हो ना तो जनाजे में खड़ा हो जाए, वो सिर्फ चार दफा इमाम कह रहे हैं अल्लाह अकबर तो ये भी कह दे अल्लाह अकबर, तो चार दफा अल्लाह अकबर इमाम के साथ कह दे, फर्ज अदा हो जाएगा जनाजे का। बाकी इमाम ने जो दुआएं मांगी है वो इसकी तरफ से भी हो जाएंगी। बाकी दुआएं याद करनी चाहिए जनाजे की तो, लेकिन लोग पढ़ भी नहीं रहे होते, ये बहुत गलत है। और फर्ज नमाज नहीं पढ़ते जुम्मे की, ये तो और भी ज्यादा गलत है। मुफ्ती साहब, जब भी कोई नेक काम करता हूँ तो शैतान इसमें रुकावट पैदा करता है, तो मैं इसको छोटी मोटी गाली निकाल देता हूँ, क्या शैतान को गाली देना जायज है? ओएस करोड़ करोड़ पक्का से, शैतान को गाली देना जायज इसलिए नहीं है कि गाली से जबान होती है खराब। जो शैतान को गालियां देगा कल वो दोस्तों को भी गालियां देगा, फिर एक दिन अब्बा गुस्से में अब्बा को भी गालियां निकाल देगा। नहीं दे, शैतान को गालियां देने की जरूरत नहीं। जी
सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मुफ्ती साहब, मैं जो है वो 4 महीने से अभी आया हूँ।
जी
तो पहले जिस मैं कंपनी में काम कर रहा था वो लू बिस्किट है।
हैं?
लू बिस्किट।
अच्छा कंपनी। हाँ
तो वो उसमें जो है ना इख्तलाफ है कि भाई वो इस्राइली प्रोडक्ट है और इसमें शेयर भी है ना, तो 51% बोल रहे हैं कि शेयर जो है वो मुसलमानों के हैं और 49 जो है वो इस्राइली प्रोडक्ट है ना। तो मैंने अपने जो है वो इलाके के मुफ्ती साहब से पता किया था, तो उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों के इसमें शेयर है तो ये जो है वो जायज है। लेकिन फिर एक बंदे से मुलाकात हुई, उसने बोला कि भाई देखो ये आलमी मसला है तो किसी बड़े मुफ्ती साहब से जो है ना इनका जिक्र कर लो कि भाई ये रोजी हमारे लिए हलाल है।
हर एक के साथ जायज है, किसी भी कंपनी में हलाल प्रोडक्ट अगर है तो चाहे वो इसराइल की कंपनी हो, चाहे वो अमरीका की हो, चाहे जापान की हो, उसमें जॉब हराम नहीं है, समझते हो। क्योंकि हम जॉब उनके लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं। आगे उनका अपना अमल है कि वो उस पैसे से क्या करते हैं। आप किसी स्टेट की कंपनी में जॉब करते हो, वो आपको तनख्वाह देता है, काम हलाल है उसका, लेकिन स्टेट को उस कंपनी से जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट से वो चर्स पीता है, तो वो आपके लिए उस कंपनी में जॉब थोड़ी हराम हो जाएगी। भाई कंपनी में तो चर्स का बिजनेस नहीं है ना, कंपनी में तो खाना पीना या हलाल चीजों का बिजनेस। अब उसकी अर्निंग से वो सेठ क्या कर रहा है ये उसका हेडेक है, ये आपका हेडेक नहीं है। सारे थोड़ी आपके सेठ लोग हज उमरे पे जा रहे होते हैं प्रॉफिट से, कुछ उससे हलाल खा रहे होते हैं, कुछ चाय पी रहे होते हैं, कुछ सिगरेट पी रहे होते हैं, कुछ गुटखा, कुछ शराब, कुछ जिना में भी उड़ा रहे होते हैं। तो आपका किससे किसी से जब भी कोई बिजनेस की डीलिंग होगी तो उसमें देखा जाएगा कि वो जायज है या नहीं है। बाकी वो अपने प्रॉफिट से क्या करता है ये उसका हेडेक है। एक आसान मिसाल है, आपने मालिक मकान से घर किराए पे ले लिया, घर भी जायज आमदन से बनाया था उसने, आपने किराए पे ले लिया, अब आप मालिक मकान को उसका किराया दे रहे, उसकी जेब में जिस दिन किराया आता है वो शराब पीने चला जाता है। आप कहते हो अब इस मकान में रहना जायज नहीं है क्योंकि मेरे पैसे से ये क्या पी रहा है, शराब पी रहा है। ओ भाई आपके पैसे से नहीं पी रहा, अपने पैसे से पी रहा है, ठीक है ना, आपके पैसे से नहीं पी रहा, आपने इससे शराब का एग्रीमेंट नहीं किया, आपने इससे घर का एग्रीमेंट किया। तो अगर मुसलमान लोग इन कंपनियों में मुलाजमत छोड़ देंगे इससे इन कंपनियों को 2% का नुकसान नहीं होगा। पहले ही हमारे मुल्क में बेरोजगारी है, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाएगी तो इनमें गैर मुस्लिम चले जाएंगे, कंपनी का 2% का नुकसान नहीं है, मुसलमानों का की ऐसी की तैसी हो जाएगी और बेरोजगार हो जाओगे आप, समझते हो। तो इसलिए कंपनी में जहां भी जॉब मिल रही है हलाल कारोबार हो, हलाल काम हो, आंख बंद करके कर लो। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, इस्लाम की तालीमात तो पानी मुफ्त में तकसीम करने की है मगर बदकिस्मती से हमारे हाकिम वक्त इसे फरोख क्यों कर रहे हैं, अरबों रुपए के कागज के टुकड़े कमा रहे हैं और अवाम 10,000 के टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं, यहाँ रियासत के फराइज और अवाम के फराइज क्या है, آپ ہمیشہ ریاست کے ظلم و ستم سہنے کی بات کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس موقع کا غیر جانبدارانہ بیان دریں، حق ظاہر کریں۔ میں بھائی ریاست کے ظلم و ستم سہنے کی کبھی بھی میں بات نہیں کرتا کہ تمہیں ریاست کوٹ رہی ہے تو تم کھاتے رہو پٹتے رہو، میں صرف کہتا ہوں مسلح بغاوت مت کرو۔ مسلح بغاوت سمجھتے ہو؟ اسلحہ لے کے ریاست پہ چڑھنے کی کوشش مت کرو، اس سے خون خرابہ ہوگا اور ملک چلا جائے گا اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں۔ اسلحہ نہ اٹھاؤ، اس کے علاوہ جس طرح سے احتجاج کر سکتے ہو کرو، کیونکہ شریعت نے ہمیں ریاست کے اگینسٹ اسلحہ اٹھانے سے منع کیا ہے۔ اگر پاورفل ریاست ہے کوئی، افغانستان میں کوئی پاورفل ریاست تھی نہیں، موبائل صدر تھا، دیگر جاتا تھا حکومت اسی کے ساتھ جاتی تھی، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ تو پاکستان میں جو بھی ہے، بہرحال صحیح حکومت ہو غلط حکومت ہو، ہے ایک پاورفل اسٹیٹ۔ تو جب آپ اسلحہ اٹھاؤ گے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، اس سے خون خرابہ ہوگا، وہی حشر ہوگا جو لیبیا میں ہوا، وہی حشر ہوگا جو عراق میں ہوا۔ اور اس کی مثال ایسے، آپ ایک پھل کاٹنے کی کوشش کر رہے ہو، ٹوکرا آپ کا دشمن رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، پھل تو آپ کاٹ دو گے لیکن اس سے انجوائے آپ کا دشمن کرے گا۔ آپ نے پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کی مسلح بم دھماکے کر کے، اسلحہ استعمال کر کے، اس بد امنی کا 100% فائدہ انڈیا کو ہوگا، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں جو مذہبی لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں ہم نے ریاست کے خلاف بغاوت کی تو ریاست پہ کنٹرول کر کے ہم اسلامی نظام قائم کر لیں گے، اگر ایسا ہوتا، ممکن ہوتا تو سبحان اللہ، لیکن ایسا اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ جب آپ ایسے کریں گے نا تو یہ ملک آپ کے کنٹرول میں قطن نہیں آئے گا، یہ چلا جائے گا یہود و نصارہ کے کنٹرول میں۔ جیسے کہ عراق میں تحریکیں چلی ہیں تو وہاں کوئی اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے، عراق مکمل یرغمال بن گیا ہے امریکہ کا۔ آپ کہہ سکتے ابھی بھی پاکستان امریکہ کے ہاتھوں میں، اور زیادہ ہاتھوں میں چلے جائے گا، اس سے نکلے گا نہیں، سارے وسائل پہ ان کا قبضہ ہو جائے گا، جیسے کہ عراق اور لیبیا پہ ہو چکا ہے۔ لیبیا میں یہی ہوا کہ لوگوں میں اشتعال پھیلایا کہ اڑا دو اڑا دو یوں کر دو، وہ انہوں نے کیا، حکومت گیری سب ختم، اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا ہے، لیبیا کس کے ہاتھ میں چلا گیا، اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھ میں۔ اب لوگ رو رہے ہیں یار وہ ظالم تھے اچھے تھے، تو میں کبھی بھی ظالم حکومت کو فیور نہیں کرتا اور کبھی بھی ان کو فیور نہیں کرتا۔ یہ جو ٹینکر میں جتنا ہر مہینے میرے گھر میں جو ٹینکر آ رہا ہے، تمہاری سوچ ہوگی کرایہ گھر کا اتنا نہیں ہے جتنا کمبخت ٹینکروں پہ خرچ ہو رہا ہے، تو میں اس گورنمنٹ کو فیور کروں گا کیا، تو پاگل ہوں، سمجھ آ رہی ہو؟ سب سے زیادہ تو میں بھگت رہا ہوں، یا تو حکومت مجھے فری میں ٹینکر دے رہی ہوتی ہے نا۔ یہ مفتی صاحب ہمارے خلاف ایک لفظ نہیں بولنا، 6 ٹینکر ہماری طرف سے فری۔ پھر آپ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ مفتی صاحب حکومت کے پٹھو ہیں، حکومت کے خلاف بولتے ہیں، میرے تو زیادہ نقصان ہو رہا ہے، آپ کی فیملی چھوٹی ہے، میری فیملی بڑی، آدھا سن تو میری فیملی سے بھرنے والا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو میں تو خود بھگت رہا ہوں بھائی، لائٹ گئی ہے اس دن یار، ہم نے تو صبح مدرسے جانا ہوتا ہے، لائٹ گئی ہے، میں جو پسینوں میں ہم ڈوبے ہیں۔ میں نے گھر والوں سے کہا جنریٹر چلاؤ، گھر والوں نے کہا وہ کھینچ رہے ہیں جنریٹر نہیں چل رہا، کیوں، گیس نہیں آ رہی۔ تو میں گورنمنٹ کو فیور کروں گا کیا، میں پاگل ہوں بیٹھ کے؟ مجھے خدا کی قسم پاکستان سے محبت ہے، حکومت پاکستان سے بالکل بھی نہیں ہے، اس خوش فہمی میں نہ رہے، لیکن میں کہتا ہوں یار حکومت کی غلط کاریوں کی سزا اسٹیٹ کو، ریاست کو مت دو، سمجھ رہے ہو؟ حکومت کی ظلم کی سزا اسٹیٹ کو مت دو، ایسا کوئی کام نہ کرو کہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں۔ بھائی ہمارا ملک ہے، بچانا بھی ہم نے ہے، بنایا بھی ہم نے ہی تھا، بچانا بھی کس نے ہے، ہم نے۔ ظالم حکومت کبھی آتے ہیں، کبھی اچھا آئے گا، کبھی برا آئے گا، تو جو پازیٹو وے میں کام ہو سکتا ہے وہ لازمی کرو، چپ کر کے نہیں مر رہا، لیکن پازیٹو وے میں کام کرو، ایسے جذباتیت سے کام نہ کرو کہ لینے کے دینے پڑ جائے۔ یہ ہمارا موٹیو ہے، اس کو لے کے ہم چل رہے ہیں، سمجھتے ہو؟ ایک فوجی آیا، کل کی بات ہے، کہہ رہا میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں، میں ایسی ملک میں نہیں رہ سکتا جس میں یہ ہو فلانا ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے تیرا کام ہے بارڈر کی حفاظت کرنا، یہ انتہائی مبارک کام ہے، اگر یہ استعفے دے ہو گے تو آگے کون گھسائے گا، پھر بارڈر انسیف ہوگا، انڈیا گھس کے کھا جائے گا ہم لوگوں کو، تو تم ملک کو کیوں سزا دے رہے ہو بھائی؟ اگر تمہیں کسی جرنیل سے اختلاف ہے، کسی فوجی سے، تمہیں آفیسر سے اختلاف ہے، تو اسٹیٹ کو کیوں سزا دے رہے ہو اس کی؟ اس کو میں نے اتنا موٹیویٹ کیا، میں نے کہا خدا کے بندے جہاد ہے یہ ملک کی حفاظت کرنا، بارڈر کی حفاظت کرنے میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہے کیا؟ ہاں ہم کبھی نہیں کہتے کہ تم سے اگر کوئی ظلم کروا رہا ہے 100% یقین ہے کہ ظلم ہے، تو پھر کبھی بھی نہیں بات مانی جائے گی، کسی آفیسر کی نہیں مانی جائے گی اگر وہ
لیکن یقین ہو کہ 100% ظلم ہے. بعض دفعہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے ظلم ہے, حقیقت میں ظلم نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اگر 100% ناجائز کام کروایا جا رہا ہے تو پھر تو اطاعت جائز نہیں ہے. لیکن بارڈر کی حفاظت کرنے میں کون سی کون کہہ سکتا ہے کہ یار, تو عجیب دماغ میڈیا نے جو ہے نا وہ اتنی پروپیگنڈا کر کر کے لوگوں کے دلوں میں اسٹیٹ کی نفرت پیدا کر دی ہے. بھائی دیکھو, مشکل حالات میں ہی جینا, مشکل حالات میں ہی ملک سے محبت کرنا. جب پاکستان اگر بالفرض اسٹیبل ہو جائے, نوٹ آنے لگیں, پھر سارے محبت کریں گے ملک سے. نہیں آئی میرا خیال بات؟ جب ابا پیسے والے ہوتے ہیں نا تو سب کو ابا سے محبت, غریب باپ سے محبت کرو پھر مسئلہ ہو. تو ہمیں حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی. ہم کہتے ہیں پاکستان کو سے محبت کرو, پاکستان کو بچانے کی فکر کرو, پازیٹو وے میں جو بھی طریقے اختیار کرو گے فائدہ ہوگا. لیکن اگر یہ شدت پسندی کی طرف گئے تو اگر آپ لوگ کے ہاتھ میں اسٹیٹ آ جاتی ہے اس طریقے سے تو بہت اچھا ہوگا یار, میں کہتا ہوں. لیکن آئے گی نہیں, سمجھ رہے ہو؟ آپ یہ کرو گے, اوٹ پٹانگ حرکتیں کرو گے, اس سے آپ کو 5 روپے بھی نہیں ملیں گے. لیکن اب ان کے جتنے ماننے والے کہہ رہے ہیں قائد تو کیا ہے, زندہ باد. قائد کیا ہے؟ زندہ باد. یہ ہوتی ہے سیاست. یہ سیاست نہیں ہے بھائی, یہ کچھ اور ہے. تو بین الاقوامی طاقتیں کیا کریں گی؟ تم سے جہاد کے نام پہ ملک میں بم دھماکے کروائیں گی, تم سے جہاد کے نام پہ نظام تبدیل کرو, ہم اس نظام کو برداشت نہیں کر سکتے, یہ کر دو وہ کر دو. اس کے بعد تم سمجھو گے کل اسلام آباد پہ ہمارا قبضہ ہوگا اور ایک مضبوط خلافت عثمانیہ دوبارہ سے قائم ہو جائے گی. اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. جو رہے سہے ہیں نا اس سے بھی جائیں گے, گلیوں میں خون بہے گا لوگوں کا. تو حکومت کے خلاف احتجاج کرو, لیکن مسلح کہ ہم خلاف ہیں. باقی جو احتجاج اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر کارٹون بنا بنا کے لوگوں کے ذلیل کرنا, یہ آپ کے غیر اخلاقی ہونے کی دلیل. آپ سابق وزیر اعظم ہو یا موجودہ وزیر اعظم ہو, اس پہ میمز مت بناؤ. شروع شروع میں ہمیں بھی اچھی لگتی تھی تھوڑی بہت, لیکن اب زیادہ ہو گئی ہے. یہ اس کی علامت ہے, اب آپ اخلاقی تنزل کی طرف جا رہے ہو. انسانیت کا نا یار احترام کے دائرے میں ایک اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے. دیکھو ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے لوگ سمجھیں گے یہ خود غیر خاندانی آدمی ہے. تو اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ مت جاؤ. آپ اعتراض کرو, احتجاج ریکارڈ کرواؤ, لیکن کارٹون بنا بنا کے اس کو ایسا ذلیل کر دینا جیسے انسان میں اور گدھے میں آپ کی نظر میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. مجرم کی بھی ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے بھائی. کیس کرو کورٹ میں اس کے خلاف, نہیں کر سکتے احتجاج کرو نا. کیونکہ سوشل میڈیا نے نا انسانیت کو ختم کر دیا ہے. جس سے ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے اس کو گدھے گھوڑے کتوں سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں. کتے کی بھی کچھ نہ کچھ ریسپیکٹ ہوتی ہے. تو بہت زیادہ قوم جا رہی ہے بے لگام, جو ہے نا کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے. کارٹون بنا بنا کے اگلوں کو اتنا زیادہ وہ کرنا, یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ بتاؤ بھائی اس نے کرپشن کی ہے, اس نے چوری کی ہے, اس پہ یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤ. لیکن کارٹون بنا بنا کے بہت زیادہ کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا, یہ ایک دو دفعہ میں چلو انسان انجوائے کر لیتا ہے, لیکن مسلسل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اتنا ہو رہا ہے کہ اس سے ہماری اخلاقی تربیت کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ قوم کوئی خاندانی قوم بولو نہیں ہے. ان لوگوں کو نہ اختلاف کا پتہ ہے کہ کیسے اختلاف کیا جاتا ہے, نہ اظہار رائے کا پتہ ہے کہ رائے کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے. تو تمیز تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ لانے کی بولو ضرورت ہے, تھوڑی سی تمیز لانے کی ضرورت ہے. تو
مفتی صاحب, السلام علیکم. مفتی صاحب, عشاء کی سنتیں, مطلب عشاء یا مطلب کوئی بھی نماز ہوتی دیر ہو رہی ہے تو سنت چھوڑ سکتے ہیں؟
عشاء کی سنتیں, دو سنتیں موقعہ ہیں بھائی, سنتیں نہیں چھوڑ سکتے دو سنتیں. ہاں آپ کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بہت زیادہ تھکاوٹ ہے, ٹینشن میں نہیں پڑی جا رہی, تو کبھی کبھار میں کوئی حرج نہیں ہے, معمول نہیں بنانا چاہیے.
شکریہ.
اچھا بھائی, تو یہ میرے پرچی کا جواب ہو گیا کہ ہم ظالم حکومت کے خلاف احتجاج کے خلاف نہیں ہیں. آپ جو پازیٹو وے میں کر سکتے ہو کرو, لیکن ملک میں افراتفری نہ پھیلاؤ, انارکی نہ پھیلاؤ ملک میں. اس سے ملک, ان حکمرانوں کا 2 ٹکے کا نقصان نہیں ہے. آپ جب توڑ پھوڑ کرتے ہو تو آپ کا کیا خیال ہے وزیر اعظم اپنی جیب سے وہ سڑک بنائے گا بھائی؟ آپ نے مزدہ جلا دی, رکشے جلا دیے, گاڑیاں توڑ دی, تو یار رکشے والے کا بےچارے کا تو بڑا غرق ہو گیا نا. حکومت کی جیب سے کچھ بھی نہیں جاتا. پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی جیب سے کوئی وزیر اعظم ریپیئرنگ کروا رہا ہو کنٹری کی. بھائی وہ پھر آئی ایم ایف سے قرضے لے گا اور وہ چند دنوں کے بعد اتر جائے گا, ہم قرضوں میں ڈوبتے چلے جائیں گے. تو ابھی کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا, وہ بڑا اچھا احتجاج ہو رہا تھا. ایسے پرامن طریقے سے احتجاج کرو, روڈ پہ آ کے نا آرام سے تمیز سے بیٹھ جاؤ, بولے تمہارا باپ جب تک بجلی نہیں دے گا उस वक्त हम रोड से उठेंगे नहीं, तो देगा उनका बाप भी देगा इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? ये वाला एहतजाज तो करो, कर नहीं रहे हैं लोग। कराची की अवाम ऐसी सुस्त हो गई है ना कि इनको जितना मर्जी निचोड़ लो, इन्होंने पुरमन एहतजाज भी नहीं करना। अब जो डाकुओं का जो राज है, इस पे भी तो एहतजाज होना चाहिए ना। आप रोड पे आके बैठ जाओ भाई, धरने मार के बैठ जाओ। क्या ख्याल है? ऐसे बैठ जाओ करके अपना शरबत वरबत नींबू वींबू गला गला के ना सबीले लगा लो, बोलो जब तक कराची में ये खून गिरना बंद नहीं होगा हम रोड से हटेंगे नहीं। तो इंशाल्लाह चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट को पता है यार, रोजाना इनकी गलियों में 6-6 बंदे भी मारते रहो, बस ताजियत के लिए चले जाएंगे। ओके, तो आपके यहां भी हमारे यहां कल हमारा मर गया था, आज आपके यहां मर गया। अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमाए। सब्र में अल्लाह ने बहुत सवाब रखा है। तो पता होता है हुकूमत को, ये इससे आगे हिलने वाली कौम नहीं है। तो पुरमन एहतजाज करो लाजमी, हम उसमें आपको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन होना पुरमन ही चाहिए। ज्यादा इधर उधर जाने की कोशिश की, रक्षे जला दिए, टायर जला के उसकी दुकान जला दी, ओ भाई इससे गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होगा, इससे नुकसान कंट्री का होगा, मेरे और आपका नुकसान होगा। ये काम मत करो, समझते हो? हाँ मेरे भाई, कोर्ट मैरिज को क्या नाजायज है या नहीं, क्योंकि गवाह इनके होते हैं। कोर्ट मैरिज हो जाती है, निकाह हो जाता है अगर गवाह मौजूद हो, लेकिन इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। लड़कियों का घरों से भागना अच्छा काम नहीं है। मजबूरी में भागी है तो एक अलग बात है। मजबूरी क्या होती है? बाप दिलचस्पी नहीं ले रहा होता लड़की के निकाह में, भाई दिलचस्पी नहीं ले रहा होता, उनको फुर्सत ही नहीं अपनी अय्याशियों से। ऐसी मजबूरी में लड़की अपनी जिंदगी तबाह नहीं कर सकती है। फिर हम उसको खुद कहते हैं जाओ कोर्ट में जाके शादी करो, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। बहुत सी लड़कियां हैं अब्बा के चक्कर में, 40-40 साल उम्र हो गई हैं, अब्बा को होश ही नहीं है, तो ये तो जुल्म है ना मेरे भाई। शेर पाओ कॉलोनी लांडी से आदरी, 2-4 मिनट आपसे मुलाकात। कहां है भाई शेर पाओ? ये क्या है कि नेगेटिव सोच का खात्मा कैसे किया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है। आज हर वक्त मनफी 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 सोच सोच के हमारी खोपड़ी खराब होती जा रही है, तो थोड़ा सा अच्छी अच्छी चीजें सोचना शुरू कर दो। देखो हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह तआला ने लिखा है कि मैं रात को सोते हुए ये सोचता हूँ कि क्या क्या सही हो रहा है मार्केट में। मार्केट के अल्फाज तो मेरे हैं, उनके नहीं है। क्या क्या? अब जैसे लोड शेडिंग है ना, गवर्नमेंट की कोई मैं फेवर नहीं दे रहा, गवर्नमेंट का तो मैंने आपको बता दिया कि जो एहतजाज पुरमन रिकॉर्ड करवाना है वो करवाओ, आप धरने भी दो और ये सब कुछ करो, लेकिन वो तो गवर्नमेंट का काम है ना। अब हमारा काम तो सबर है ना, वो नहीं कर रहे तो हम क्या करें? तो हमने क्या करना है, हमने ये नहीं देखना लाइट कब कब जा रही है। हमने देख रहा है आज दिन में 3 दफा पंखा चलते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। मैं आपको सुस नहीं बना रहा कि आप हुकूमत के खिलाफ एहतजाज ना करें, मेरी बात का ये मतलब हरगिज नहीं। गवर्नमेंट के खिलाफ जो एहतजाज करना है ना, जो गवर्नमेंट ने बिजली छीनी हुई है वो करें आप, लेकिन जब तक नहीं हो रहा ठीक तो सबर कैसे करें? तो सबर के लिए ये सोचें कि आज दिन में 3 दफा पंखा हमने अपनी आंखों से चलता हुआ देखा है, आज हमारा इतना पसीना निकला जिसकी वजह से इतना फैट हमारी बॉडी से कम हुआ जो हम कई सालों से कम करना चाह रहे थे। मैं तो यही सोचता हूं, इतना पसीना निकल गया तो देखो कैसी डाइटिंग खुद बहुत कुदरत की तरफ से हो गई। क्या ख्याल है? ये फायदा है, तभी तो मैं गर्मी के फजाइल पर बयान किया था आप लोग को थोड़ा सा हौसला दिलाने के लिए। इतने फायदेमंद है यकीनन पसीना निकलना, इतना पसीना निकल गया हमारा, समझ रहे हो? ये सोचा करें। तीसरी चीज ये सोचा करें कि भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल हुआ हम नहीं मरे, यानी ये बहुत बड़ी नेमत है। आज का दिन भी आपका गुजर गया कराची में रह के और आप नहीं मरे, किसी ने आपको बम धमाके में भी नहीं उड़ाया और आपको गोली से भी नहीं उड़ा। आप बस में गए आए, बटवा था, और अगर बटवा गुम जाए, पर्स चोरी हो जाए, तो पर्स चोरी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, शलवार का नाड़ा चोरी नहीं हुआ, वरना वो नाड़ा भी खींचते हैं बिल्कुल। इज्जत महफूज रह गई, दौलत तो आने जाने वाली चीज है, समझ रहे हो? तो ये मन जब कुछ दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद बेइज्जती फील होना खत्म हो जाएगी। बेइज्जती फील होना क्या हो जाएगी? खत्म, तो खुश हो जाएंगे। ये तो मैं एक मजाक में समझा रहा हूं, लेकिन मकसद यही है कि अच्छी चीजें भी बहुत सारी हो रही हैं, तो उनको सोचा करो। जब कुछ दिन सोचने के आदी हो जाओगे ना, तो फिर इंसान खुद ही पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है। नेचर भी होती है, देखो हमारे एक रिलेटिव हैं,
अब तो बूढ़े हो गए, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। हम बचपन से उनको देख रहे हैं कि वो हर बुरे आदमी में भी अच्छाई तलाश कर रहे होते हैं। हमारे खानदान में वो मशहूर हैं कि यार इस आदमी के मुंह से कभी किसी की बुराई नहीं सुनी हमने। ये कुछ लोगों में होता है। मिसाल के तौर पर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा ना, तो वो क्या कहेंगे, यार असल में गुर्बत इतनी है, बेचारे ने क्या कर ला था, तो वो उसको भी फेवर दे रहे होंगे। मुझे याद है मैं बचपन में स्कूल में मेरे नंबर कम आए, मैं चौथी क्लास में था, मेरे नंबर कम आ गए। अब मुझे था मेरे घर वाले हैं मुझे डांटेंगे, तो वो हमारे रिश्ते में दूर के चचा लगते हैं, तो वो उनको जब पता चला, अच्छा सब में मेरी बेइज्जती हो रही है ना, सब के यार नंबर कम आए हैं इसके, अच्छा नंबर कम आके भी सेकंड आया था मैं, तो नंबर कम है, मुझे बेइज्जती फील हो रही है, भाई भी वालदा भी वालिद भी सब वो आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा नंबर कम क्यों है, मैंने कहा स्कूल में पढ़ाई नहीं है, तो वो मुझे फेवर देने लगे। कहते हैं भाई नंबर बेचारे के कम क्यों, जब स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी तो नंबर क्या होंगे, तो इसका कसूर? मुझे लगा यार एक ही बंदा है जो मुझे हौसला दे रहा है, एक ही बंदा है, वो उनकी आदत है ये। बाज लोग अल्लाह ने बनाए ऐसे हैं, हालांकि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं ली उन्होंने, कहीं से तरबियत नहीं की उन्होंने, बस वो हर चीज में ना पॉजिटिविटी। और बाज लोग बिल्कुल इसके उल्टे होते हैं, उनको कोई इतना बड़ा कीड़ा तो नहीं कहना चाहिए मस्जिद में, क्या कह सकते हैं, यानी इंसेंट, वो क्या होता है, इंसेक्ट, सॉरी। तो यानी ये भी मुनासिब नहीं, मस्जिद में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बाल जो भी था उनको, बाज लोगों को ऐसा होता है कि वो हर अच्छी चीज में भी कीड़े ही निकाल रहे होते हैं बैठ के। वो हकीम का लतीफा फिर याद आ रहा है मुझे, एक हकीम हर एक को कीड़ों की दवा दिया करता था, जो भी जा रहा है भाई पेट में कीड़े हैं, पेट में कीड़े हैं। लोगों ने कहा यार कोई और भी तो नजला जुकाम खाती, बस उन्होंने कहा ये कीड़े खत्म होने चाहिए। एक दिन एक आदमी दरख्त पे चढ़ा, फिसला, गिरा, टांग की हड्डी टूट गई। हकीम के पास लोग लेकर आए, हड्डी जोड़ी हकीम ने और कीड़ों की दवा दे दी। लोगों ने कहा इसका कीड़े से क्या ताल्लुक है, हकीम ने कहा कीड़ा था तभी तो चढ़ा था, तुझे यार दरख्त पे चढ़ने, बंदरों का काम है दरख्तों पे चढ़ना, क्या ख्याल है भाई, इंसान का काम थोड़ी है, तू फल तोड़ना है डंडे से लेके तोड़ ले यार तू। उसने कहा अगर इसको कीड़ों की दवा नहीं दी ना ये दोबारा चढ़ेगा, तो इसके टांग की हड्डी से ज्यादा इलाज किसका जरूरी है, कीड़ों का इलाज। तो वो क्या करते थे कि बाज लोगों की आदत है हर पॉजिटिव चीज में भी क्या तलाश कर रहे होते हैं, किसी की अच्छी तकरीर सुनी तो तारीफ करने के बजाय, अब असल में ये मंजन बेच रहा है, जो एक है वो सरकार जो है ना उसका यही काम है, कोई बात करो अबे असल में तो इनके मफाद हैं, अबे असल में तो यूं है, अबे असल में तो यूं है। भाई तुम क्या कीड़ों की दुकान खोल के बैठ गए हो, हर शख्स में तुम्हें कीड़े ही नजर आ रहे हैं, सारी दुनिया इतनी बुरी नहीं होती, तो बैलेंस होना चाहिए यार। इतना पॉजिटिव भी नहीं कि चोर चोरी करके भाग रहे हैं आप उसको फेवर कर रहे हैं, जाने तो बेचारा गरीब है, तो भाई गरीब है तो इसका मतलब ये थोड़ी है चोरियां करना शुरू कर दे। तो और इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप जो अच्छी बात कर, हम जाहिर के मुकल्लफ हैं भाई, हम बातिन के दिल के मुकल्लफ नहीं। अगर कोई अच्छी बात कर रहा है माशाल्लाह भाई बहुत अच्छी बात की उसने, YouTube पे भी जब कोई क्लिप आया करे कोई अच्छी बात किया करे आपने क्या कहना है, वेल डन, बहुत अच्छा भाई। अब उसको अब एक देखो एक और मसला हो गया है, बाज लड़कियां होती हैं दुपट्टा नहीं होता उनके सर पे, टिकटॉक पे वीडियो बना रही होती है, बात बड़ी खानदानी बात दफा कर रही होती है, ठीक है ना। अब देखो जितनी बुराई है ना उतनी करनी चाहिए, लोग क्या करे तो तुम पर्दा करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसी हो, तुम बेगैरत हो, यार ये मौका नहीं है, जो बात उसने की है आप उस पर उसको अप्रिशिएट कर लो, फिर आप नीचे लिख दो कि बहन अगर आप पर्दा भी कर ले तो कितना अच्छा हो जाए। इसका मतलब आप हर चीज को फिर उसका हक, बाज औरतें औरत होके मर्दों के हकूक पे बात कर रही है यूट्यूब पे घर जोड़ने के लिए, समझ में आ रही है बात, और औरतों ने उनको गालियां दी हुई होती हैं अलग, हालांकि वो औरत होके मर्द के हुकूक पे इसलिए कि भाई सब चीजें मर्दों ने नहीं ठीक करनी, कुछ खवातीन को अपने आप को भी सुधारना पड़ेगा, वो एक सोसाइटी की इसलाह के लिए कर रही होती हैं। औरत जब ये बात करेगी तो ज्यादा सुना जाएगा। तो लोगों ने बजाय उसके कि यार उसको अप्रिशिएट करें कि भाई चलो इसलाह की बात की है, नीचे हो तुम तो पर्दा नहीं कर रही, ये बात ठीक है पर्दा ना करना गुनाह है, लेकिन हर बात एक मौके के मुताबिक होती है, तो आप उसको अप्रिशिएट करें, नीचे एक थोड़ी सी लाइन लिख दें कि बहन अगर पर्दा कर लो तो और ज्यादा अच्छा हो जाए। अभी वो झेलम वाली सरकार का मैं तस्करा करता नहीं, लेकिन कल से ना एक क्लिप बहुत सामने आ रहा है मेरे ना, उसमें एक लड़की पीछे पड़ गई है झेलम वाली सरकार के, आप देख रहे होंगे टिकटॉक पे ना आजकल वो लड़की झेलम वाली सरकार की कुरान पढ़ने की गलतियां निकाल रही है कि ये देखो ये गलत पढ़ रहे हैं, दावे ये कर रहे हैं कि मैं इमाम हरम की भी गलतियां निकाल सकता हूं और खुद कुरान गलत, ये गलत ये गलत, इतनी गलतियां उसने निकाली हैं। तो अब झेलम वाली सरकार ये तो कर नहीं सकती कि उसके खिलाफ ऐसे रिएक्शन रिकॉर्ड करवाएं जैसे कराची के मुफ्ती के खिलाफ, क्योंकि बहरहाल एक हमारी सोसाइटी में औरत का एक एहतराम है, होना भी चाहिए। तो अब झेलम वाली सरकार के शागिर्द बजाय उसका दलाई से जवाब देने के ना क्या लगे, कुरान की पर्दे वाली आयतें लिख लिख के सूरह हिजाब की आयत, इस्लाम में औरत पे पर्दा फर्ज है। भाई साहब सबको पता है इस्लाम में औरत पे पर्दा फर्ज है। अभी वो जिस चीज को फोकस कर रही है वो ये कह रही है कि हजरत आपके दावे इतने बड़े बड़े हैं कि इमाम हरम को भी कुरान सही पढ़ना नहीं आता, 99% उलमा कुरान गलत पढ़ते हैं और आप एक आयत गलत नहीं पढ़ रहे, गलत पे गलत पढ़ते चले जा रहे हैं, तर्जमे गलत करते चले जा रहे हैं। तो अभी इसका जवाब दें, दुपट्टे वाली आयतें के लिए हम बैठे हुए हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना, वो हम उसको बता देंगे। नहीं आई बात समझ में, हर फैन ने क्लिप बनाया हुआ होता है कि देखो बहन औरत को सर पे दुपट्टा लेना चाहिए, औरत को पर्दा करना चाहिए, औरत को ये करना चाहिए। भाई वो करना चाहिए, हम भी मानते हैं। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है ना, एक केस कोर्ट में आए, एक औरत जो है ना वो बगैर दुपट्टे के आए और बोले कि इसने मेरे 500 रुपए चुराए हैं। जज उसको मुद्दा को बुलाए कि तुम्हारे ऊपर इस लड़की ने केस किया कि तुमने 500 रुपए चुराए हैं। वो कहे 500 की बाद में बात करेंगे, जज साहब इसको सर पे दुपट्टा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जज कहेगा ये दुपट्टे के प्रोग्राम में इसको इंशाल्लाह समझा दूंगा बात, ये दुपट्टा मेरा हेडिक है, स्टेट का हेडिक है, इसके बाप और इसके भाई का हेडिक है, जो दीगर मजहबी स्कॉलर्स हैं उनका हेडिक है, फिलहाल आप पे जो इल्जाम लग रहा है ना आप क्या करें, उसका जवाब दें। तो झेलम वाली सरकार के फैंस की सरकार से तो मैं खिताब नहीं कर रहा, झेलम वाली सरकार के जो स्टूडेंट्स है ना मैं उनसे खिताब कर रहा हूं कि वो लड़की जो दलाई बहुत मजबूत दलाई से बात कर रही है, वो आपने हमारी बातों को तो उड़ा दिया बिल्कुल, आप ऐसे पी जाते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, खोला वाला क्लिप डकार मार लिए बिल्कुल। तो आप उसकी बात का जवाब दें, और जवाब नहीं देते ना तो दुपट्टे पर बयान करने के लिए मैं यहां अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हूं, उसके लिए आपको तकल्लुफ की जरूरत नहीं, वो मैं उसको समझा दूंगा बयान में, अभी भी समझा रहा हूं भाई, खवातीन को दुपट्टा लेना चाहिए, पर्दा करना चाहिए। तो आप उसका फिलहाल उसके जवाब को फोकस करें आप काइंडली। अच्छा भाई, नेगेटिव सोच का खात्मा कैसे किया जाए, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, मोबाइल में कुरान मोबाइल कुरान तिलावत है नहीं, क्यों नहीं है भाई, तिलावत तो तिलावत है। क्या लिखा हुआ है जी, बिस्किट फैक्ट्री में, वो बता दिया मैंने, तमाम मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब जायज है भाई। 643, ये क्या भाई, यासिर बीएसपी, ये क्या है। मुफ्ती साहब मैंने बचपन में दादी का दूध पी लिया, क्या मेरा फूफी की बेटी से रिश्ता हो सकता है। फूफी की बेटी आपकी क्या बन गई, दादी का दूध पिया तो आपकी दादी आपकी बन गई अम्मा, तो दादी अम्मा बन गई तो फूफी की बेटी आपकी क्या बन गई। इससे भी आदमी की खोपड़ी बहुत आउट होती है यार, ये दूध के मसाइल जब लोग पूछते हैं ना तो हाँ, तो अब नहीं हो सकता निकाह हाँ फूफी की बेटी से अब नहीं हो सकता निकाह, क्योंकि फूफी आपकी बहन बन गई रजाई, तो लिहाजा उनकी बेटी से अब आपका निकाह नहीं हो सकता। नौजवानों में ये चल पड़ा है कि टच मोबाइल में कुरान करीम पढ़ते हैं और फिर इसी में इस्लामी ड्रामे और फोहश चीजें और दूसरी चीजें भी देखते हैं। इस्लामी ड्रामे और फोहश चीजें देखना तो जायज नहीं है, बाकी फोहश चीजें अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो उसी में अगर कुरान भी पढ़ रहे हैं तो इसमें बेदबी का अंसर नहीं है, इसलिए कि मोबाइल के जो स्क्रीन है ना ये कोई पेपर नहीं है, ये सिर्फ एक रेज है। जब इसमें फोहश चीज देख रहे हैं तो वो फोहश चीज आ रही है, जब वो फोहश चीज गई तो वो बिल्कुल फना हो गई, उसका कोई वजूद बाकी रहता ही नहीं है, यानी उस वीडियो शक्ल में। तो फिर जब आप कुरान, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे शीशे के सामने आपने यू कुरान रख दिया तो कुरान नजर आएगा, शीशे के सामने किसी लड़की को लाके खड़ी कर देंगे तो क्या नजर आएगी लड़की। अब कोई क्या है, जिस शीशे में लड़की देख रहा था उसी में कुरान देख रहा है, तो ये गलत दलील होगी। हाँ, मोबाइल में फोहश चीजें देखना हराम पहले भी था, अब भी है और हमेशा हराम रहेगा, लेकिन इसकी वजह से अगर मोबाइल में कोई कुरान पढ़ रहा है तो बेदबी नहीं कहलाएगी। एक ढंग का काम कर रहा था वो बेदबी की वजह से रोक दिया कुरान पढ़ने वाला, और जो हराम काम कर रहा था वो तो वैसे ही कर रहा है, वो हमसे पूछ के कर नहीं रहा।
तो उसको तो ये कहा जाएगा भाई कुरान तो कम अज कम पढ़ो ना तुम, बाकी हराम काम छोड़ो। अब वो कुरान भी बेअदबी की वजह से छुड़वा दिया तो एक खैर की चीज थी वो भी छुड़ गई, वही हिसाब हो जाएगा। वो मस्जिद में आ गया था एक इमाम साहब की गाय ना, तो किसी देहाती की गाय आ गई, इमाम साहब ने डंडे मार के निकाल दिया उसको। तो उसने कहा मुझे देखा कभी आपने, बेजबान जानवर आ गया गलती से, मैं तो कभी नहीं आया एक ही आया था उसको भी निकाल दिया आपने। नौजवानों में ये जल पड़ा है मुझाब, हमारे अकाबिर मोहद्दिसीन के दौर में जंगे हुई, इस्लाम बचाना मुश्किल हो गया, करता इस दौर में राफिजियों ने भी सही बुखारी से कैसे दिखाए जाते हैं। भाई जान ये मुझे से ना शिया सुन्नी सवाल ना पूछा करो, इससे सोसाइटी में फिरकावारियत बढ़ती है कम नहीं होती। कोई अकीदा हो मुझसे पूछ लिया करो कि ये अकीदा ठीक है या गलत है, बस इससे आगे जाने की कोशिश मत करो। मुफ्ती साहब आप कहते हैं कि यजीद के मुतालिक अहले सुन्नत की राय इत्तेदाल वाली है, जबकि अहले सुन्नत के ही बाज हजरात जैसे फला 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 कहते हैं कि राय पर यजीद के मुतालिक लानतुल्लाह या फिर रहमतुल्लाह वाली है, यजीद के किस्से भी मुझसे मत पूछा करो। समझ रहे हो मेरे बयान में जो आपकी अमली जिंदगी से जिन चीजों का ताल्लुक है, मैं सिर्फ उन्हीं को फोकस करता हूँ, मुझे इन मौजूआत पे जरा भी दिलचस्पी नहीं। ये नहीं कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, आलिम की जहालत है कि जो उसके पास नॉलेज है बगैर देखे सोसाइटी के वो नॉलेज ट्रांसफर कर दे, इससे बड़ा फितना दुनिया में कभी भी नहीं होता। आपके पास अगर इल्म है संभाल के रखो अपने पास, लोगों को वो बताओ जिनका उनकी अमली जिंदगी से ताल्लुक। ना यजीद से नफरत हमारे ईमान का हिस्सा, ना यजीद से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा। एक शख्स था जो तारीख में आया और चला गया, जिसको लानतुल्ला लगता है वो लानतुल्ला बोले, जिसको रहमतुल्ला लगता है वो रहमतुल्ला बोले, अपनी जिम्मेदारी पे बोले। कल अल्लाह उससे पूछेगा तो बता दे कि मैंने रहमतुल्ला क्यों बोला था, अपनी जिम्मेदारी पे। हमसे पूछ के ना लानतुल्ला बोले ना रहमतुल्ला। हम सिर्फ ये जानते हैं हजरत मुआविया चूंकि सहाबी रसूल हैं, उनसे मोहब्बत हमारे ईमान का जुज, और उनका दिफा करना हमारी मजहबी जिम्मेदारी। बाकी तारीख में इतने लोग आए इतने गए, हमें किसी से क्या लेना देना। और दूसरी बात यह कि आप जब रिपोर्ट पेश करते हैं ना इस बारे में, तो लोग न्यूट्रल होके आजकल रिपोर्टें सुनते नहीं है। एक नजरिया बनाया हुआ होता है पहले से पक्का, वो जांच रहे होते हैं कि इस मजहबी स्कॉलर का वही वाला नजरिया है या नहीं है। ये ऐसे जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपके गुर्दे में तकलीफ है और आप चेक कर रहे हैं कि वो वाली दवा लिख के देता है जो मेरी खोपड़ी में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वही लिख के देगा तो ठीक है, नहीं तो इसका मतलब ये दो नंबर डॉक्टर है। अगर डॉक्टर को पहले से पता चल जाए तो उसको दवा देगा, कहेगा भाई तू मुझे डॉक्टर समझ के नहीं आया, तू अपने आप को मेरा बाप समझ के आया है, तो इसलिए पतली गली से निकल। तो यजीद और इस तरह के टॉपिक में इतनी लोगों में जज्बातीपन आ गया है कि कोई किसी के खिलाफ बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आपने लानतुल्ला कह दिया तो रहमतुल्ला वाले आपको लानतुल्ला कह देंगे, आपने रहमतुल्ला कह दिया तो लानतुल्ला वाले आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो भाई जब तुम दलाइल से बात सुनने के लिए न्यूट्रल होके तैयार ही नहीं हो, तो और फिर मौजू का हमारी अमली जिंदगी से कोई ताल्लुक भी नहीं है। आप कह सकते हो कातिलाने उस्मान को फेवर, कातिलाने हुसैन को आप फेवर दे रहे हो। भाई कातिलाने हुसैन पे कल भी लानत, आज भी लानत और कयामत तक लानत, ऐसी की तैसी। अब आगे चलो, ठीक है ना, ये टॉपिक खत्म, अब क्या करो, आगे चलो। तो हम तो भाई अभी सोसाइटी की इसलाह की कोशिश कर रहे हैं। आज वो जो लड़की आई है जिसको तीन तलाकें हुई हैं, उसको पता है किस बात का, इस तरह की लड़कियों को गम इस बात का भी होता है शौहर छूट गया, इस बात का ज्यादा गम होता है मार्केट में दोबारा नहीं मिलेगा, ये ज्यादा गम होता है। यजीद को लानतुल्ला बोलो रहमतुल्ला बोलो, इन औरतों का पुरसान हाल कोई भी नहीं है। ये जिना की तरफ जाने का खतरा होता है इनके, क्योंकि कोई इंसान का बच्चा दूसरी शादी करके इनको ठिकाने देने को तैयार नहीं होता, और जो कमबख्त दूसरी कर रहा होता है वो एक नंबर का वो होता है जो मैं बयान से पहले आपको पूरी गाली, नए लोग आए हैं अभी बयान के बीच में उनको नहीं पता, वो रखते ही नहीं है उसकी जिंदगी और लटका के। तो इन औरतों को ठिकाना दो भाई, जिना को छोड़ो सोसाइटी में, शराब को छोड़ो, नमाज की पाबंदियां करो। फजर में कितने नमाजी होते हैं, एक सफ होती है, लेकिन यजीद पे रिपोर्टें इनसे आप तकरीरें करवा लो। जो सवाल पाप से पूछा जाएगा उसकी तैयारी है नहीं, आपका पेपर आउट हो गया, इस्लामियात का या किसी भी कोई भी पेपर था आउट हो गया, उसमें ये सवाल लिखा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो, उस सवाल की तैयारी के बजाय कोई और सवाल लेके बैठे हुए हो। अब्बा देखेगा, अब्बा बोलेगा कमबख्त तुझे तो खुशकिस्मत है, तुझे तो पेपर का पहले से पता भी चल गया कि पेपर में ये सवाल आने वाले हैं इम्तिहान में, फिर भी कमबख्त उसकी तैयारी नहीं कर रहा। तो तैयारी कर रहा है कि
जो है वो न्यूटन के सर पे सेब क्यों गिरा था, हालांकि ये सवाल उसमें है ही नहीं। तो पहले इसकी तैयारी कर ले, उसके बाद फिर दूसरे मौजूआत भी हैं। तो हमसे जो सवाल होगा भाई, नमाज का सवाल होगा, हुकूक व लिबात का, बहनों की विरासतें खा के बैठे हुए हैं लोग, वो दे नहीं रहे हैं, कुछ जुल्म कर रहे हैं, कोई औरत शोहर पे जुल्म कर रही है, कोई मर्द औरत पे जुल्म कर रहा है, कुछ बहनों की विरासत खा के बैठा हुआ है। वो गालियां भी तो हमें पब्लिक ने ही सिखाई हैं। मेरे सामने जो हालात आते हैं ना, तो मेरा तो दिल करता है कूटूं पकड़ के, मैं तो डिप्रेशन में चला जाए। बाद दफा मैं रात को सोता हूं, मेरी नींद उड़ती है, ऐसे ऐसे हालात आ रहे होते हैं ना। तो जब आदमी बीसियों लोगों से मिलता है, उनके हालात देखता है, तो फिर उसकी नींद उड़ती है, दिमाग खराब होता है। सुकून में वही है जो अपने घर में बैठा हुआ है, ऑफिस गया, जॉब करके आया, खाना पिया, आराम से सो गया, वो सुकून में होता है। जो पब्लिक में उठता बैठता है ना, जिसको लोगों का पता है, उसके सुकून में आना बड़ा मुश्किल काम है भाई। तो इसलिए क्या बात कर रहा था मैं, जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं। हाँ, तो अपने आप को ना मुफीद कामों में लगाओ। बहुत सी चीजों में ये कह देना कि मुझे इल्म नहीं है, ये कोई ऐब की बात नहीं। हर आदमी हर चीज में फंटर नहीं होता। आप बोलो भाई हमें नहीं पता यार, हमें नहीं पता भाई क्या होगा, हमें नहीं पता, तो इन झगड़ों में पढ़ो ही नहीं यार। और अगर पढ़ना है तो फिर प्रॉपर रिसर्च करो, फिर यजीद के बारे में पूरी तहकीकी किताब। स्कॉलर्स को सुनना काफी नहीं है, हर स्कॉलर का एक नजरिया होता है, वो थोपरा होता है। फिर आप खुद तहकीक करो, किताबें पढ़ो, अलविदाया व निहाया पढ़ो, तारीख की बेहतरीन किताबें अल्लामा इब्ने कसीर की, अरबी में है, असल में उर्दू में भी छप चुकी है, वो पढ़ो। इसी तरह मौलाना इस्माइल रेहान की एक बहुत बेहतरीन किताब है, तारीख पर उन्होंने लिखी है, वो पढ़ो। अबुल हसन अली नदवी की तारीख की किताबें पढ़ो। आप चलो स्कॉलर की नहीं पढ़ते, आप डायरेक्ट ये स्कॉलर भी तो कहीं से ले रहे होते हैं ना, वो असल जो माखज़ है ना, फिर वो पढ़ो आप, और उसके लिए ठीक ठाक टाइम चाहिए। वो पढ़ के फिर एक तज़िया करो, तो एक राय कायम करो। आप स्कॉलर्स को सुनोगे तो मेरी अपनी राय होगी, इंजीनियर साहब की अपनी राय होगी, गामदी साहब की अपनी राय होगी, सबकी राय आपस में क्या हो रही है, टकरा रही है। तो जब टकरा ही रही है और सबका दावा ही है, तो किसी को भी नहीं सुनो, फिर क्या है, बोलो भाई हमारा मसला है ही नहीं, छोड़ो। हमें अपने बाप की फिक्र करनी है, अपनी माँ की फिक्र करनी है, अपने आप को जहन्नम की आग से हमने बचाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन हुस्नी इस्लाम अल-मरई तर्कुहु मा ला यानी, इंसान के इस्लाम की अच्छाई में से ये है कि जिस चीज का दुनिया या आखिरत में फायदा नहीं है उस चीज को छोड़ दे। और नबी ने हमें दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजु बिका मिन इल्म ला यनफा, अल्लाह उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूं जो हमें फायदा ना पहुंचाए। हर चीज में नॉलेज अच्छी नहीं होती। आप अपनी शादी हुई, अपनी बीबी से पूछ रहे तुम्हारा किस किस से चक्कर था, वो पूरी नॉलेज दे दी उसने आपको, क्या आपकी जिंदगी में आने से पहले फलाने से भी चक्कर था। नॉलेज तो मिल गई, इसके बाद जिंदगी का प्रोग्राम चलेगा, बेहतर नहीं था, जो छुपा हुआ था वो क्या रहता, जाहिल रहते, बीवी से मोहब्बत करते, भाई थी अब थी ना, अब तो नहीं है ना। बहुत कुछ जिंदगी में किसी के पता नहीं क्या क्या हुआ होता है, बस खत्म, मिट्टी पाओ, तुम्हारे साथ सही चल रही है तो सही चलते रहो। क्यों मोबाइल में घुस घुस के देख रहे हो कि किससे बात हो रही है किससे नहीं हो रही, वो तुम्हारे मोबाइल में घुसी हुई है। नॉलेज आएगी इससे टेंशन, अभी देखो कि भाई अभी क्या चल रहा है, अभी भाई मेरे से मुझसे खुश है, मैं इससे खुश हूं, दोनों में मोहब्बत है। बीवी बता भी रही हो ना कि मैं आपको बताऊं, माजी बोलो खुदा के लिए अपना माजी मुझे नहीं बता, बस बहुत अच्छी हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह मसीह। एक खातून का मैंने आपको बताया था ना वाकया, उस लड़की ने कहा कि मैंने अपने शोहर को सब बता दिया, शादी की पहली रात में बहुत अच्छी बनने की कोशिश की ना, मैंने सब बता दिया कि मियां बीवी में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के लिबास हैं, लिहाजा मैं सब बता दिया। क्या मतलब, सबका मतलब समझते हो, सब बता, वसीम के बारे में, जमशेद के बारे में, यही होगा। जरी मैंने दिल बड़ा किया कि मेरा शोहर मुझे इज्जत देगा कि भाई चलो जो था अब खत्म हुआ, अब आज से हम एक नई जिंदगी का, मुझे उसी वक्त फोन पर गुस्सा आया, मैंने कहा आप क्या कह रही है। अब जब जरा सा फड्डा होता है ना, जब तक हम नॉर्मल चलते हैं ठीक है, जरा सा झगड़ा हुआ मुझे ताने देता है फाहिशा होने के, कि तू तो ऐसी थी, तेरे तो जमशेद से ताल्लुकात थे, तेरे तो वसीम से भी दोस्ती थी, तू तो इतना कह रही आना जाना था। बेटा सिर्फ आना जाना नहीं होता, तूने बहुत कुछ किया होगा, अब छुपा रही है, कह रही है। जब मसला होता है ताने देता है। मैंने कहा गलती आपकी है भाई, आपको इतनी रिपोर्टें पेश करने की, वो तो गलत कर रहा है, वो भी गलत कर रहा है, लेकिन आपने भी तो कोई अच्छा, तो हर नॉलेज अच्छी नहीं होती, छोड़ो मिट्टी पाओ यार। हमारे नबी ये चाहते थे कि जब लोग आपके सामने आए ना, तो आपको उनके बारे में अच्छा पता हो, उनकी गलतियों का इल्म ना हो, دیکھو حضرت عویمر اجلانی نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا ہے. دیکھو ہمارے پاس اگر کوئی آئے نا میری بیوی نے زنا کیا, ایک دم کان ہمارے کیا ہو جاتے ہیں کھڑے, کہ ابھی ذرا بیٹھ ذرا تفصیل سے بتانا یار, ایسا اس کو دفتر کھلوا اس کو ذرا چائے وائے پلا یار, بھائی اس کی بیوی نے پتکاری کی ہے, انجوائے کرتے ہیں. کیا خیال ہے کہ ایک قصہ ہاتھ آ گیا نا, کیا خیال ہے بھائی تبصرہ کرنے کے لیے. ابے جس کو ہم نیک سمجھ رہے تھے اس کی بیوی ایسی نکلی, ہم تو مزے لے لے کے سنتے ہیں. ہمارے نبی کی کیسی پاک دامن سیرت تھی یار, صحابی رسول نبی کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا, آپ نے نفرت سے منہ پھیر لیا, نفرت سے منہ پھیر لیا. یعنی حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے نبی کو اتنی شدید نفرت ہوئی کہ مجھے کیوں بتا رہے ہو بھائی, تم کیا تو مٹی ڈالو, نہیں رکھنا تو چھوڑ دو, طلاق دے دو اس کو, دنیا میں کیوں لے کے آ رہے ہو اس بات کو, چھوڑ دو نا, کیا کرو بھائی, تمہارا اگر ہے تو بس چھوڑ دو, کوئی بہانہ کر کے چھوڑ دو, ہمیں کیوں آ کے بتا رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خوشی کا اظہار نہیں کیا, بخاری کی حدیث ہے. اور پھر ان سے کیا فرمایا, جب وہ بار بار کہتے نا, فرمایا گواہ لے کر آؤ, وہ اللہ حد فی ظہرک, ورنہ تمہاری پشت پہ کوڑے ماروں گا میں, حد قذف جسے کہتے ہیں, گواہ نہیں ہے تو تمہاری پشت پہ کوڑے لگیں گے. اس کو نبی نے لائک نہیں کیا اس عمل. پھر بہرحال وہ کہتے رہے تو پھر گواہ تھے نہیں, پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, انہوں نے کہا میں کہاں سے گواہ لے کر آؤں. پھر وہ لعان کے حکم نازل ہوا کہ چار چار قسمیں اٹھائی گئیں, وہ لمبی ڈیٹیل ہے. علامہ نووی نے حدیث کے تحت لکھا کہ اگر عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام نہ کرتے تو لعان والی آیتیں نازل نہ ہوتی. اسلام کا ایک آرڈر ہو جاتا, بھائی کسی نے دیکھا ہے تو اس کو فارغ کرے چپکے سے. اب ایک مشکل میں سب آ گئے نا, ایک پھنس گئے. تو ہمارے نبی کبھی بھی یہ سن کے خوش نہیں ہوتے تھے کہ آپ کو اس طرح کی خبریں پتہ چلیں, فلانے نے یہ کیا فلانے نے یہ کیا. ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں, انجوائے کرنا شروع, ایک نیا قصہ آ جاتا ہے. اور یہ خوب ذہن میں رکھو, میں بار بار کہتا ہوں, عامر لیاقت کی جو برہنہ ویڈیو شائع ہوئی تھی نا, جس نے بھی شائع کی اس کو چھوڑو نہیں. عامر لیاقت سے ہمارے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن جس عورت نے اس کی برہنہ ویڈیو بنائی اور شائع کی, اس وقت لوگ عامر لیاقت کو برا بلا کہہ رہے تھے, اس کی بیوی کو برا بلا نہیں کہہ رہے تھے. اس پہ کیس ہونا چاہیے, مجھے نہیں پتا کیس ہوا ہے, میں نہیں کہہ رہا خود جا کے کچھ کرو, کیس کرو اس کے خلاف. کیس تو آپ نہیں کر سکتے, وہ تو اس کے لوگ ہی کریں گے, لیکن جس نے بھی کیس کیا اس کو اپریشیٹ کرو. کل یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. تو جو اس طرح کی ویڈیو بنا رہا ہے اس پہ بھی سخت سزا ہونی چاہیے, جو اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہا ہے اس کے لیے بھی سخت قانون ہونا چاہیے, جو اس کو وائرل کر رہا ہے اس کے لیے بھی سخت قانون ہونا چاہیے. اسلام میں کسی کی عزت سب سے پہلے ہے. آپ نے دیکھو, بس یہ بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں, کسی کو زنا میں دیکھ لیا نا, شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کا راز فاش کریں جا کے. بہت سخت شرائط رکھی ہیں کہ چار گواہوں, چار بندوں نے دیکھا ہو, پھر بھی اسلام میں لازم نہیں ہے کہ آپ گواہی دیں. ان چاروں کو اس کی اجازت ہے کہ چھپا لیں. عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں چار آدمی آئے کہ ہم نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب پھر تو شریعت مجبور ہے کہ بھائی, شریعت کا حکم ہے, یعنی مجبور ہے مفتی کہ بھائی وہ حد زنا جاری کرے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے حکم دیا کوڑے لگانے کا, لیکن ان گواہوں کو اپریشیٹ نہیں کیا. فرمایا تم اگر دنیا میں اس کی عزت رکھ لیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا, تم نے ایک مسلمان کو ذلیل کر دیا. اور اگر چار گواہ نہیں ہیں نا, تین یا دو ہیں, تو پھر اسلام کیا کہتا ہے, الٹا ان کے کوڑے مارو. کہ جب سزا بھی نہیں ملنی تھی تو اب تو بدنام کرنے کے علاوہ کوئی بھی نیت نہیں ہے تمہاری. اسلام میں کسی کے گناہ پہ اتنا سخت پردہ ڈالنے کا حکم ہے, اور آج اسلام کا لیبل لگا کے اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اصل میں اس طرح کے لوگوں کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ دھوکے میں نہ آئیں. آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے بھائی؟ ہاں جو کھلے عام جرم کر رہا ہے نا, کھلے عام, وہ تو خود اپنے جرم کو نہیں چھپا رہا ہے, پھر اس کو خلاف بولو آپ. بند کمروں میں کون کیا کر رہا ہے, کس کا کس سے چکر چل رہا ہے, کس کی بیوی کیا کر رہی ہے, کس کا میاں کیا کر رہا ہے, یہ میرے اور آپ کا ہیڈک بولو نہیں ہے, یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. بولو بھائی, میں تو ان عورتوں کو ڈانٹ دیتا ہوں جو جن کو میں جانتا ہوں, ان کے شوہروں کو جانتا ہوں. وہ بتا رہی ہوتی ہے میرا شوہر یہ کر رہا تھا, میں کہتا ہوں بھائی آپ کے شوہر کو میں جانتا ہوں, آپ اپنے شوہر کے راز میرے سامنے کیوں پاس کر رہی ہو کہ وہ یہ کرتا ہے. انون بن کے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا, کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوج فلمیں دیکھتا ہے تو کیا حکم ہے. ایک عورت مجھے بتا رہی ہے اس کے شوہر کو جانتا ہوں, میرے میاں فوج فلمیں دیکھتے ہیں. ابے تمہارے میاں فوج فلمیں دیکھتے ہیں, اس نے بھی گند کیا, تم نے اس کو, میں اس کو جانتا بھی ہوں,
تمہارے میاں کو، میرے دل میں اب اس کی عزت رہے گی؟ میرے بیان میں آ کے بیٹھے گا، میں بولوں گی وہی ہے جس کی بیوی کہہ رہی تھی فلمیں دیکھتا ہے، میں بھی تو انسان ہوں نا، میرے دل میں بال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ عورت ذلیل کر رہی ہے اپنے شوہر کو، یار جو تمہارا سب سے بڑا، جو تمہارے لیے اللہ نے مقام بنایا، باپ سے بڑا رتبہ دیا ہے شوہر کو، جب آپ نے اس کو ذلیل کر دیا تو دو ٹکے کی عزت اب آپ نے اس کی چھوڑی نہیں ہے، پردہ ڈال دیتی گھر میں، انون بن کے پوچھتی کہ میرا میاں یہ کام کرتا ہے تو ایسے میاں کا کیا حکم ہے؟ میں بہت ساری مشورے دے دیتا آپ کو، لیکن جب آپ نے بول دیا وہ والا میاں، اس کی بات کر رہی ہوں، وہ جو آپ کے بیان میں سامنے، آپ میں سے کوئی نہیں ہے بھائی جو سامنے بیٹھا ہوتا نا، یہ والے سائڈ پہ، یہ والا میاں، اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے یار؟ میں بھائی جب ہم سب آپس میں ملتے ہیں تو ہمیں کیا پتا کون کیا کر رہے ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں سب نیک ہیں، یہی سمجھ کے ملتے ہیں نا، نہ آپ میرے گناہ جانتے ہو نہ میں آپ کے گناہ، محبت ہے جو ہو اللہ سے معاملہ رکھو بھائی اپنا، لیکن جب بتا دیا آ بھائی مذاق کر رہا ہوں آپ نہیں ہے، یہ ایسا کرتا ہے، میں نے بول دیا یہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، کیا عزت رہ گئی بھائی؟ انسان 100 دفعہ گناہ کر کے، خدا کی قسم 100 دفعہ اللہ کے سامنے توبہ کرے نا، اللہ فرشتوں سے بھی بھلا دیتا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا، اللہ کا ضرب بہت بڑا ہے، ایک دفعہ کسی عورت نے اپنے شوہر کے گناہ کو پبلک کے سامنے لے آئی نا، وہ 100 دفعہ بھی توبہ کر لے گا، اب اس کی عزت سوسائٹی میں بحال نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مرد بھی اگر اپنی بیوی کے کسی گناہ کو دنیا کے سامنے لے آئے، اب وہ عورت 100 دفعہ بھی توبہ کر لے گی، اب اس کی سوسائٹی میں عزت، جب لوگ ویسے تو عزت دیں گے، ذرا سا مسئلہ ہوگا لوگ کہیں گے یہ وہی ہے، یہ کیا ہے؟ تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کے رازوں پہ پردہ ڈالنے والے ہیں، جب آپ نے پردے ہی اٹھا دیے تو میاں بیوی کے جو رشتے کی بیس تھی وہ کیا ہو گئی بھائی؟ ختم، وہ بالکل ختم۔ تو کیسے جرم ہو رہے ہیں سوسائٹی میں یار، ایک دوسرے کے راز اچھال رہے ہو، سوشل میڈیا پہ چسکے لے لے کے، ہاں کھلے عام جو کر رہا ہے اس کو ذلیل کرو، چور ہے لوٹ رہا ہے لوگوں کی دولت کھلے عام، اس کو نہیں کہ پردے ڈالو گے، ٹھیک ہے نا، اس کا تو شریعت نے حکم دیا بھائی نقصان پہنچائے گا، کچھ گناہ کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ بندے کا معاملہ ہے، اس پہ کیا کرنا ہے؟ پردہ ڈالنا ہے، تو اس میں لوگوں نے خفیہ کیمرے لگا لگا کے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کیمرہ لگانے والے کو گالیاں نہیں دے رہے ہوتے، میرے پاس ایک مسجد کا کیس آیا کہ خادم کے کمرے میں کسی نے چپکے سے کیمرہ لگا دیا، تو اب کیا ہے؟ یہاں کا واقعہ نہیں ہے کہ یہاں سمجھے یہاں کے خادم کی بات ہو رہی ہے، ایک مسجد کا، وہ مسجد کے جو کمیٹی تھی نا اس کے خادم سے جھگڑا ہو گیا، اب کمیٹی نے کیا کہ اب مسجد کے خادم کے کمرہ بھی اس کو ایک الگ گھر دیا ہوا تھا، مسجد کا کمرہ نہیں تھا یعنی ایک الگ گھر دیا ہوا، تو کیا کیا اس گھر میں چپکے سے کیمرہ لگا دیا، اب اس نے کوئی غلط حرکت کی ہوگی، فوج فلم دیکھی ہوگی یا کیا کیا ہوگا، اس کو اب بلیک میل کرنا شروع کر دیا، وہ بےچارا روتا ہوا میرے پاس آیا، میں نے کہا میرے بھائی تم نے تو غلط کیا لیکن خدا کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ اللہ ان کمبختوں کو کبھی توبہ کی توفیق دے گا، آپ کو کسی کے کمرے میں گھسنے کی اجازت بولو نہیں ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اور تو نئی فلم دیکھ رہا نا، غلط نہیں کر رہا لیکن کیمرہ لگا کے چلا گیا ہے، تجھے نہیں چھوڑے گا اللہ۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، دو بھائی تھے، ایک گناہگار تھا ایک نیک تھا، وہ نیک ہر وقت گناہگار کو تانے دیتا رہتا تھا کہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے، تو وہ کہتا تھا یار میں توبہ کروں گا، اللہ توبہ کی توفیق دے گا، ایک دن اس نے غصے میں کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو نہیں تو تو جہنم میں ہی جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو اتنا غصہ آیا، عین المتعلی علی اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم تیری مغفرت نہیں ہوگی، حدیث میں آتا ہے اللہ نے کہا کہ کون ہے جو میرے اوپر قسم اٹھا رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، یعنی تو نیک ہو کے اتنا تیرے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے کہ تو یہ فیصلے خود کرنے لگا ہے کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا، تو جنت جہنم تیرے ہاتھ میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے دونوں کو موت دی، جو گناہگار تھا اس کو جنت میں داخل کیا اور نیک کو جہنم، حالانکہ گناہگار پہ جنت بن نہیں رہی تھی، صرف اس کو دکھانے کے لیے داخل کیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو میں نے اس خادم سے کہا، میں نے کہا جس کمبخت نے تیرے کمرے میں کیمرہ لگایا ہے نا، وہ یہ فحاشی نہیں بھی کرتا ہوگا، میرا ضمیر یہ کہتا ہے وہ جہنم میں الٹا لٹکا ہوا ہوگا، میرا ضمیر یہ کہتا ہے، اللہ کہے گا تو پاک ہو کے بھی ناپاک ہے تو، کیونکہ آپ کو یہ کس نے اتھارٹی دی ہے بھائی آپ لوگوں کے گناہوں کے اندر گھسنے کی کوشش کریں، کتنا بڑا جرم ہے یار، وہ بند کمرے میں غلط کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ فلم دیکھ کے کوئی اچھا کام کر رہا ہے یا کوئی، تو لیکن آپ کو یہ معاملہ کس کا ہے؟ بندے اور اللہ کا معاملہ، میں تو باپ کو اس کی پرمیشن نہیں دیتا کہ بچہ کمرے میں بیٹھا ہوا آپ دھاڑ سے دروازہ کھول کے جائیں کہ کیا کر رہا ہے، باپ کے لیے اجازت تھوڑی ہے بچے کے گناہ پہ مبتلا ہو،
हाँ बाप निगरानी के लिए ये बता दे कि भाई कमरे में बैठो बेटा, कुंडी लगाने की इजाजत नहीं है, कुंडी खोल के बैठो, जब कंप्यूटर इस्तेमाल करो लॉन्च में सब देखेंगे। मैंने भी घर में एलईडी लगाई है खुलेआम, बंद कमरे में बच्चे को इजाजत नहीं है। लेकिन अगर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर मेरा बच्चा कुंडी लगा के बैठा हुआ है बंद कमरे में, तो मैं दौड़ करके अचानक देखूं क्या कर रहा है, मेरा जमीर इस पे आमादा नहीं होता। अगर बिलफर्ज गलत कर रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते, अगर गलत कर रहा होगा यार क्यामत तक मुझसे नजरें मिलाने के काबिल बोलो नहीं रहेगा, कोई रहेगा काबिल नजरें मिलाने के, क्या इज्जत रह जाएगी। तो हम भी ये समझ रहे हैं भाई कोई गुनाह नहीं हो रहा, वो भी समझ रहे हैं, इससे इसलाह आसान है। और जब एक दफा किसी के गुनाह पर लोग मुत्तले हो जाते हैं ना, तो शैतान को मौका मिलता है, शैतान कहता है कि देख तू जलील तो हो गया, अब करता रहे, अब क्या कर, जब तक छुपा हुआ था ना तो वो भी तोबा इस्तिगफार करके इसलाह की कोशिश कर रहा होगा, यार अभी जलील नहीं हुए, जलील होने से बचने के लिए कोशिश कर रहा होगा। लेकिन जब एक दफा लोगों ने उसको जलील कर दिया, वो कहता है इज्जत तो अब वैसे ही खत्म हो गई है, तो इससे शैतान को और ज्यादा मौका मिलता है। तभी हदीस में आता है कि जब कोई गुनाह करे उसको फिर सजा भी मिल गई ना, उसको जैसे खुलेआम गुनाह किया, कोई हद जारी हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको जलील मत करो, क्योंकि उसको तुम जलील करोगे तो तुम शैतान को मौका दोगे उसको गुमराह करने का, क्योंकि फिर वो जिद पे आएगा। तो आप लोगों की इज्जत करना सीखो मेरे भाई, जो बुराई है उस पर क्या करो, पर्दा डालो, छुपाओ उसको। तो किसी के गुनाह पे जबरदस्ती मुत्तले होने की कोशिश ना करो, बंदे का अल्लाह का मामला है, अल्लाह पे छोड़ो। हम सबसे मिलेंगे भाई, सब अच्छे हैं भाई, क्या है सब अच्छे, अपने से बदगुमान रहो भाई, मैं सबसे बुरा हूं, बाकी सब लोग क्या है बहुत अच्छे हैं। तो मत घुसो मोबाइलों में, एक दिन के लिए मोबाइल पकड़ा तो घुसना शुरू कर देता है अंदर, देखें है क्या, ठीक है। तो क्यों घुसते हो किसी के मोबाइल में, क्यों घुसते हो भाई दोस्तों के मोबाइलों में, क्यों लोगों के घरों में झांकने की कोशिश करते हो, क्यों खुफिया, हाँ गली महल्ले में कैमरे लगाओ ताकि चोर डाकू पकड़े जाएं, वो ओपन एरिया है, घरों में मत लगाओ। एक दफा एक आदमी ने कैमरे लगाए गली में, कह रहे मैं अपने घर के कमरे में भी लगाना चाहता हूं ताकि बीवी को ट्रेस करूं। मैंने कहा ये गैर अखलाकी हरकत है, अगर बीवी पर इतना एतमाद है ही नहीं ना तो फिर रखो ही नहीं बीवी, इतना ज्यादा शक करना बीवी के ऊपर, या तो कोई कुछ कुछ देखा हो अपनी आंखों से, बिला वजह कमरे में कैमरा लगा रहे, मेरी बीवी ही तो है ना भाई, बीवी भी हो कोई भी हो, हर वक्त हर आदमी की कैफियत एक जैसी नहीं होती। इतना हमें बीवी की भी निगरानी की इजाजत नहीं है कि आपने अपने बेडरूम में खुफिया कैमरा लगा दिया हो कि बेगम क्या कर रही है, बस ये बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर औरत भी लगा दे आपके कमरे में कैमरा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, यार आदमी कभी किस पोजीशन में लेटा होता है, कभी कभी कुछ कर रहा होता है, वो कोई भी चीज रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इतना नहीं भाई, ये बीवी पर अगर एतमाद नहीं है तो छोड़ दो यार उसको, इतना क्यों हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या फरमाया, जब कोई सफर से वापस आए, सही हदीस है, तो अचानक घर में मत दाखिल हो, सही हदीस है, पहले इतला कर दो घर वालों को कि मैं आ गया हूं। कैसी अहकाम हमें सिखाए, अचानक छापे मत मारो, एकदम दौड़ करके कुंडी खोल के आया, देखूं बेगम जमशेद के साथ बैठी है या गफ्फार के साथ बैठी है, क्या गैर अखलाकी हरकत है यार, तुझे अगर यकीन नहीं है तो बेगम रखी क्यों है तूने, तो आप इतला दे दो पहले, भाई मैं आ गया हूं, मैं एयरपोर्ट से घर आ रहा हूं, तो हो सकता है जमशेद हो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जिनके ऐसे ताल्लुकात होते हैं ना वो छुपते नहीं है, वो खुद ही पकड़े जाते हैं। तो खाम खामे मासूम बीवी पे शक ना करो, कोई बाकायदा रिपोर्टें हैं तो फिर तो निगरानी करो, बाकायदा हो, लेकिन वहमी आदमी को रिपोर्टें नहीं होती है, वहमी का खोपड़ी कभी सेट होती नहीं है, खाम खामे शक मत करो, अगर कोई रिपोर्टें मिल रही है, ये शक करना, शुभा करना, खुफिया कैमरे लगाना, ये ठीक अमल नहीं है, गुनाह है, इससे घर उजड़ते हैं और बहुत दफा वसवसे पैदा होते हैं। बीवी खराब नहीं होती, खाम खामे वसवसे आना शुरू हो जाते हैं, शौहर खराब नहीं होता, खाम खामे वसवसे आना, बाद अब शोहर दोस्त एक दूसरे से लड़की बन के बातें कर रहे होते हैं, बीवी ने देख लिया मोबाइल, अब आप कयामत तक समझाता रहो भाई ये मेरा दोस्त है, मैं मजाक कर रहा था, आई लव यू मजाक में बोल दिया, वो नहीं मानेगी, शैतान उसके दिल में हमेशा के लिए शक पैदा कर देगा। इसी तरह औरत के साथ भी होता है। तो अल्लाह ने एक उसूल और जाब्ता बना दिया, भाई किसी के राज को फाश मत करो, तजस्सुस मत करो, किसी की टोह में लगने की कोशिश मत करो, सबको क्या समझो अच्छा, और लोग भी तुम्हें क्या समझे अच्छा, बाकी कोई बुराई है किसके सामने रखो, अल्लाह के सामने, उसकी इस्लाह की कोशिश करो। ये इस्लाम ने निजाम दिया है, जो मार्केट से क्या हो रहा है भाई, शॉर्ट हो रहा है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम।